ரசம் வசிஷ்டநப்தாரம் சக்தேஹ பௌத்ரமகல்மஷம் பராசராத்மதம் வந்தே சுகதாதம் தபோநிதிம். देखिए एक प्रश्न आया है, बहुत सावधानी से सुनेंगे। पूछा है कि मेरे घर पर मैं हमेशा भागवत का पाठ करती हूं, परंतु मुझे किसी ने कहा कि आप भागवत पढ़ने के अधिकारी नहीं हो, सिर्फ ब्राह्मण ही पढ़ सकते हैं, ब्राह्मण के अलावा सुनने व पढ़ने वाला दोनों नरकों में जाता है। अब आप इस बात का संशय मिटाओ, ये बात लिखी है। इस बात के पूछने पर हम उत्तर देते हैं कि भागवत के प्रधान श्रोता परीक्षित है, वो ब्राह्मण थे क्या? और परीक्षित और सुखदेव जी के संवाद को सुनाने वाले सूत जी महाराज हैं, वो ब्राह्मण थे क्या? और मैत्रेय और विदुर का संवाद चल रहा है, उसमें विदुर जी महाराज ब्राह्मण थे क्या? तो वक्ता और श्रोता ऐसे मिलेंगे जो ब्राह्मण नहीं है और भागवत का है और भागवत में लिखा है। इसके अलावा भागवत में कई जगह है, एक उदाहरण दे रहे हैं, एक उदाहरण जो आ जाएगा आजकल में, आज भी आ सकता है। चौथा स्कंद है, 23वां अध्याय है और उसमें 32वां श्लोक है। उसमें लिखा है कि जो ये चरित्र सुनेगा, ब्राह्मण होगा उसको ब्रह्म ज्ञान होगा, क्षत्रिय होगा उसको राज्य वगैरह मिलेगा, वैश्य यदि करेगा तो उसको धन संपत्ति मिलेगी और शूद्र यदि सुनेगा तो उसको महत्ता मिलेगी। ये सब बात लिखी हुई है। तो ये भ्रम है कि केवल ब्राह्मण ही पढ़ सकता है और ब्राह्मण ही सुन सकता है, ये नहीं है। ऐसा नहीं मानना चाहिए। बड़े प्रेम से भागवत पढ़ो, बड़े प्रेम से आप लोग सुनो। जो ये कह रहे हैं कि हम रोज भागवत पढ़ती हूं, तो उनसे यही कहना है कि आप छोड़ो मत, भागवत तो यही बात बोलता है। कैसे कह दिया किसी ने? कोई प्रमाण तो है नहीं, हम तो प्रमाण सुनने के लिए तैयार हैं। आप कोई प्रमाण लेके आओ, भागवत का प्रमाण, कि जिसमें लिखा हो कि भाई भागवत को शूद्र नहीं सुन सकता। सूत जी महाराज ने भागवत कहने का श्री गणेश ही यहीं से ही किया कि देखो हम ब्राह्मण तो नहीं है, हम विलोम जाता विलोम जाति में पैदा हुए हैं और हम देखो भागवत के कारण से आज आप लोगों के बीच में बैठे हुए हैं। स्वयं सूत जी ने कहा है, ये भ्रम मिटा दो। ये जाने कैसे बोलते हैं, किस प्रकार से बोल देते हैं, कोई प्रमाण तो है नहीं। कोई प्रमाण हो तो हम उसको स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। अस्तु, अब विदुर जी महाराज ने कपिल भगवान के चरित्र के विषय में पूछा कि आप कर्दम ऋषि का देवहूति का कैसे विवाह हुआ, ये हमको बताइए। तो देखो भाई, कथा भाग तो बहुत है, कथा भाग को हम संक्षेप कहेंगे क्योंकि कथा तो सब जानते हैं। कथा के अंदर कोई साधन की बात होती हो और कथा के अंदर कोई रहस्य की बात होती हो, वहां पर अपने विशेष विचार करेंगे तो उसमें समय लगेगा तो भागवत की कथा हो जाए। सामान्यतया कथा सभी जानते हैं। मैत्रेय जी महाराज कहते हैं कि कर्दम जी थे, वो ब्रह्मा जी की छाया से पैदा हुए थे, छाया या कर्दमो जग्ये, तो ब्रह्मा जी के बेटा थे। ब्रह्मा जी ने कहा कि बेटा तुम भी प्रजा का विस्तार करो, तो वे 10,000 वर्षों तक भगवान की आराधना करने लगे। अब ध्यान से सुनना, तो फिर भगवान ने शब्द ब्रह्म रूप से उनके सामने दर्शन दिए। शब्द ब्रह्म क्या होता है? लिखा है शाब्दम ब्रह्म दधत वपुः। शब्द ब्रह्म क्या है कि शब्दों के द्वारा जैसा हम परमात्मा का निर्णय सुनते हैं और सुनकर के हम अपने अंदर जैसी मूर्ति को बसाते हैं, ठीक वैसी ही परमात्मा की झांकी हमको दर्शन देवे, वो शब्द ब्रह्म रूप होता है। किसी ने ये सुन लिया कि भगवान यूं लड्डू गोपाल होते हैं, ऐसे ऐसे भगवान है, वो यूं लड्डू गोपाल यूं हाथ में यूं लड्डू लिए हुए रहते हैं, ऐसी झांकी मन में बसाई और वैसी पूजा की, वैसी धारणा की, वैसी उसने ध्यान किया, उसको वैसे के वैसे भगवान दर्शन देंगे, वैसे के वैसे। एक भक्त था, उसका परिवार में कोई नहीं था, स्त्री भी मर गई, बेटा भी नहीं था, माँ बाप भाई बंधु कोई नहीं था, अकेला था। वो बीमार हो गया, वो मरने लगा, तो उसने भगवान से प्रार्थना की कि हे प्रभु, मेरा तो संसार में कोई नहीं है, मुझे पिंडदान कौन देगा? मेरे मरने के बाद पिंडदान कौन देगा, कैसे देगा? तो जब उसने भगवान की आर्त होकर के प्रार्थना की, तो भगवान उसके पास आए और उसके सिर को अपने यहां जांग पर रख लिया और उसको कहा, देख तेरे लिए पिंडदान ले आया, ये देख, यूं करके उसको दिखाया। वो यूं सो गया और जांग पर उसको रख लिया, मैंने सिर रख लिया और कहा, ये देख तेरे लिए पिंडदान, मैं दूंगा तुझे पिंडदान। वो यूं देवता रहा, उसी समय शरीर शांत हो गया। तो भाई भगवान का स्वरूप जैसा हम बसाते वैसे के वैसे भगवान आ जाते हैं। तो शाब्दम ब्रह्म ददद वपु, शब्द ब्रह्म की उपासना कर रहे थे कर्दम ऋषि, तो भगवान उनके सामने आए और गरुड़ जी पर बैठे हुए आकाश में खड़े रहे। वो भगवान आकाश में ही खड़े रहे। आकाश में क्यों? आकाश में इसलिए कि उन्होंने ऐसी आराधना की थी, यूं भगवान गरुड़ पर है, यूं बैठे रहे। भगवान को देख करके कपिल भगवान ने कर्दम जी बहुत प्रसन्न हुए, कहने लगे, बस महाराज नेत्रों का अंतिम फल आपके दर्शन मिल गए, अब हमको नेत्रों से और कुछ नहीं देखना है, आपके चरण कमल संसार सागर से पार करने के लिए नौका के समान है, ऐसे चरणों का प्रेम तो छोड़ते हैं और थोड़ी देर का सुख देकर अनंत दुख देने वाले विषयों में ये लोग प्रेम करते हैं। हे प्रभु, हम सब लोग लोकपाल आपके वाणी रूपी मर्यादा रूपी डोरी में सब बंधे हुए हैं। मुझे मेरे पिताजी ने कहा है कि तुमको विवाह करना चाहिए, तो अब महाराज मेरा विवाह करना कैसे, क्या करूं कैसे नहीं करूं, मुझे आप बताओ किसके साथ विवाह करूं। तो भगवान ने कहा कि देखो, आज के तीसरे दिन तुम्हारे पास में मनु आएंगे, शत्रुपा आएंगे अपनी बेटी लेकर, उसके साथ तुम विवाह कर लेना और मैं तुम्हारा पुत्र होकर के तुम्हारे वहां जन्म लूंगा और मैं तुम्हें बहुत बढ़िया, मैं तुम्हें तो नहीं लेकिन तुम्हारा पुत्र होकर मैं इस संसार के कल्याण के लिए बहुत सुंदर संगीता का उपदेश दूंगा। इतना कहकर भगवान तो अदृश्य हो गए। भगवान का इतना प्रेम हुआ, देखो कहीं भक्त रोता है भगवान को देखकर, यहां भगवान रोए, तो वो बिंदु सरोवर हो गया, जहां भगवान के अश्रु बिंदु पड़े वो बिंदु सरोवर हो गया। भगवान यहां क्यों रोए? प्रेम के कारण से, प्रेम के कारण से भगवान रोए। अब जो है उनके आश्रम में तीसरे दिन ही मनु महाराज आए और जो है उस राजा का बड़ा स्वागत करते हुए पूछा कि महाराज आप लोग कैसे आए आश्रम में। तो मनु जी महाराज ने बात कही कि हमारी ये कन्या है देवहूति, इसका नाम है, इसने नारद जी के द्वारा आपकी महिमा सुनी है, तो हमने विचार किया कि हमारी कन्या का विवाह आपके साथ कर दिया जाए। तो कर्दम ऋषि ने कहा हम इसे स्वीकार तो करते हैं क्योंकि आपकी कन्या बहुत श्रेष्ठ है और इसकी सुंदरता पर तो स्वयं विश्वावसु नाम का गंधर्व था, वो विमान में से जा रहा था, इसकी सुंदरता को देखकर मोहित हो गया था, ऐसी सुंदर आपकी कन्या है। ध्यान देना, भगवान की जिसके अंदर भक्ति होती है वो संसार के अंदर राग नहीं करता, फंसता नहीं है। तो नारद जी ने तो आपको कहा है, मैं भी जानता हूं आपकी कन्या बहुत सुंदर है और विश्वावसु गंधर्व जो कि स्वभावतः सुंदर होते हैं वे गंधर्व पुरुष यहां मानवीय कन्याओं पर रीझते नहीं है, पर आपकी कन्या इतनी सुंदर कि उसके ऊपर वो रीझ गया और रीझ गया इतना ही नहीं वो अपने विमान से इसके लिए नीचे कूद पड़ा। वो विश्वावसु गंधर्व सम्मोह विमूढ चेता, परंतु महाराज इसने उसको स्वीकार नहीं किया और उसको आप मुझे दे रहे हैं, मैं इसको स्वीकार तो करता हूं परंतु, ये जो परंतु लगाया ना ये इस ऋषि की भगवान के प्रति कैसी प्रीति है ये प्रकट करती है कि मेरे जब संतान हो जाएगी तब फिर मैं इसको छोड़ करके अपना अलग रहने लग जाऊंगा, इसको छोड़ दूंगा, या आप पहले से ही सोच लो। तो ऋषि की ऐसी अनासक्ति देखी स्त्री ने, ये अनासक्ति क्यों हुई? भगवान की भक्ति थी। देखो आज हमारी विषयों से आसक्ति हटती क्यों नहीं है? क्योंकि हमको भगवान की आसक्ति नहीं हुई, भगवान में प्रेम नहीं हुआ, इसलिए विषय आसक्ति पड़ी है हमारी। जो जो भगवान में आसक्ति बढ़ेगी, भगवान में आसक्ति नहीं होती, भगवान में तो प्रेम ही होता, जो जो भगवान में प्रेम होता ये विषय नीरस मालूम देते हैं। तो कर्दम ऋषि ने जब ये बात कही तो उनको मानना पड़ा कि भाई ऋषि का वैराग्य कैसा विलक्षण है, उनका अब आप जानो आपका काम जाने। उन्होंने अपनी कन्या दे दी और माता पिता उस कन्या को छोड़कर अपने स्थान पर आ गए और वे अपनी कन्या को सुपुर्द करने के बाद भगवान की कथा सुनते और भगवान के स्वरूप का ध्यान करते, इसी में ही अपना उनका अपना समय लगा कर ये मनु और शत्रुपा का। अब जो है इधर वो देवहूति का कर्दम ऋषि के साथ जब विवाह हो गया तो कर्दम ऋषि तो समाधि में बैठ गए। अब इतनी सुंदर स्त्री की महिमा गाई लेकिन स्त्री आदि से कोई संबंध ही नहीं, कोई मतलब नहीं उनका, समाधि में बैठ गए, भक्ति में बैठ गए। और उस देवहूति ने देखो कैसी पति की सेवा की, जिसकी सुंदरता को देखकर गंधर्व मुग्ध हो गए थे, उस देवहूति ने अपने शरीर को पति की सेवा में ऐसा लगाया दुबली पतली हो गई। जितनी वो सुंदर थी सेवा करते करते उतनी वो जो है शरीर से कुरूप हो गई। ये असली सौंदर्य है स्त्री का, वो चमड़ी का सौंदर्य होता है वो तो मलमूत्र का सौंदर्य है, लेकिन ये जो सेवा का सौंदर्य है ये स्त्री का असली सौंदर्य है। वो अपनी समाधि में उठ कर देखे, अरे तुम वो देवहूति हो जिसका मेरे साथ विवाह हुआ था, मनु और शत्रुपा की कन्या तुम वो देव होती हो, तुम्हारा रूप, तुम्हारा रंग, तुम्हारा ये स्वरूप कहाँ चला गया भाई? अरे देवहूति, तुमने तो हमारी सेवा के अंदर सबसे प्यारी चीज शरीर होता, उसको भी तुमने लगा दिया और उसकी भी तुमने परवाह नहीं की। तो ये तुम्हारी सेवा मुझे बहुत ही आदर की लगी है, तो मैंने जितने सिद्धियां प्राप्त किए उन सब सिद्धियों पर मैं तुम्हें अपना अधिकार देता हूं। मैंने कई सिद्धियां प्राप्त की, सब सिद्धियों में तुम्हारा अधिकार है। अब बोलो तुम्हारी क्या इच्छा है? अब ये देखो एक एक रहस्य की बात है, वो पूछते तुम्हारी क्या इच्छा है, तुम क्या चाहती हो। जैसे कोई भगवान की आराधना करे और भगवान कहे कि बोलो तुम्हारी क्या इच्छा है, तो भगवान उसकी इच्छा पूरी करते हैं। ऐसे स्त्री यदि पति की बिल्कुल सेवा में तल्लीन रहती है तो उसकी सेवा के प्रभाव से पति के अंदर एक विलक्षण गुण आता है और वो उस पत्नी की इच्छा को पूरी करने का सामर्थ्य आता है और वो कहता है बोल तू क्या मांगती है, वो तुझे दे दूं। इतना पति के अंदर सामर्थ्य आता है। बिल्कुल सच्ची घटना है, एक शरणानंद जी महाराज वे अच्छे महापुरुष, उनकी बताई हुई घटना महाराज श्री ने बताई कि एक परिवार था, पति और पत्नी रहते थे। पति था वो न खाने चीज खाता था, न पीने वाली चीज पीता था, बीड़ी सिगरेट ये तो मामूली बात थी, लेकिन वो मांस भी खाता था, मदिरा भी पीता था और बहुत ही नीचा खान पान था उसका। ऐसे करते करते उसकी पत्नी थी बड़ी सात्विक थी, वो मांस लेके आता कि मेरा मांस बनाओ, तो उसका मांस अलग बना के दे देती, लेकिन स्वयं फिर नहा धोकर के अपने अलग बर्तन रखती और अपना अलग रोटी वगैरह अलग बना के खाती। पति को कभी कुछ नहीं कहा कि मांस मत खाओ, कि मदिरा मत पियो, कुछ नहीं बोलती। एक दिन पति का अकस्मात ही कोई हार्ट अटैक हो गया, पति के ऊपर हार्ट अटैक हो गया और वो एकदम जो है मरणासन्न हो गया। डॉक्टर आए, डॉक्टर ने देखा, देख दाख करके, और डॉक्टर ने डॉक्टर से पूछा कि जी इनके लिए क्या खाने पीने, साहब इनको तो ये जो कुछ करते हैं तो सब बंद करो इनका, और ये जो सिगरेट पीते हैं ना इससे तो इनके लिए बहुत ही खराब बीमारी हो गई, इलाज तो देखो करते हैं लेकिन ये सिगरेट पीते ही बहुत खराब चीज है। ऐसे करते करते इलाज किया, इलाज वो ठीक हो गया। अब वो अपने पति की सब सेवा करती और करती और फिर अपने लिए अलग से वो सब कुछ व्यवस्था करती भोजन की और की, तो पति पर प्रभाव पड़ा कि ये पत्नी अपने माँ बाप को छोड़कर क्या इसलिए आई है मेरे पास यार, कि मेरे लिए मांस बनाए, मेरे लिए ये करे, मैंने इसका ये उपयोग किया। और ये बिचारी डॉक्टरों को बुलाती है, डॉक्टर से पूछती है, सलाह करती है, ये करती है, वो करती है, तो और इसको मालूम है कि मेरा खाना पीना पसंद भी नहीं है, फिर भी बिचारी मुझे कुछ नहीं बोलती है। तो ऐसा करके उसने क्या किया कि पूछ ही लिया, उसने पूछ लिया पति ने कि देख तुझे मेरी आदत का ज्ञान तो है कि मैं क्या खाता हूं क्या पीता हूं, तू किसी एक चीज के लिए बोल दे मैं आज एक चीज का त्याग करता हूं, मांस है, मदिरा है, सिगरेट है, और है, तुम एक चीज के लिए बोल दो। तो बहुत देर सोचने के बाद कही आप सिगरेट पीना छोड़ दीजिए। वो तपाक से बैठ गया, अरे मैंने सोचा तू मांस मदिरा के लिए बोलेगी, तूने सिगरेट के लिए क्यों कहा? क्योंकि डॉक्टर ने बताया कि सिगरेट के अंदर बहुत जहर जा रहा है आपके, इसलिए मैंने कहा, बहुत ज्यादा जहर जा रहा है उससे। तब उसके मन पर असर पड़ा कि देखो ये केवल मेरे हित के लिए सोचती है, मांस मदिरे के लिए नहीं कहा। तो कहा देख सिगरेट तो तेरे कहने से छोड़ता हूं, लेकिन मांस मदिरा वगैरह तेरी भावना की, तेरी भावना समझ के उसका त्याग मैं अपनी मर्जी से करता हूं। अब जीवन में न तो कभी मांस खाऊंगा, न कभी मैं जो है शराब पीऊंगा, सब छोड़ दिया उसने। उस स्त्री के सेवा के प्रभाव से तो भाई पति की सेवा का मामूली प्रभाव नहीं होता, और पतिव्रता स्त्री जब सेवा करती है तो उस पति का जीवन बदल जाता है। हमारे यहाँ ऐसी ऐसी पतिव्रताएं हुई है जिनकी सेवा का कोई उदाहरण दूसरी जगह विश्व में और संस्कृति में मिलता नहीं है, ऐसी विचित्र सेवा करने वाली। तो भाई पतिव्रताओं की सेवाओं का प्रभाव पति के जीवन को बदलने वाला हो जाता है। तो हमारे देवहूति जी ने ऐसी सेवा की तो उसके कारण से कर्दम पर ऐसा असर पड़ा। फिर कर्दम ऋषि ने पूछा कि तुम्हारी क्या इच्छा है, तो कहा कि देखिए महाराज, हमारी इच्छा यह है कि हमारी गोद खाली है, बालक नहीं है। बालक हो तो देखो आपका गृहस्थ सफल होगा, मेरा विवाह सफल होगा, और आपके पिताजी ने आपको आदेश दिया है कि प्रजा का निर्माण करो, वो पिता की आज्ञा का पालन भी होगा, इसलिए संतान नहीं है। तो कहा ठीक बात है। वहां बिंदु सरोवर था, उन्होंने बिंदु सरोवर में स्नान करने के लिए कहा। वो बिंदु सरोवर में स्नान करने के लिए डुबकी लगाई तो उसको भाई 1000 स्त्रियों ने पानी के अंदर ही घेर लिया देवहूति को, और उसको खूब मलमल करके स्नान कराया, अच्छे कपड़े पहनाए और जो है बड़ा अच्छा श्रृंगार किया। परंतु वह उनसे कहने लगी कि हे देवियों, मुझे ये श्रृंगार नहीं चाहिए। स्त्री का असली श्रृंगार तो केवल पति होता है। मैं अपने पति के पास बैठती हूँ, पति के पास रहती हूँ, पति की सेवा करती हूँ, ये मेरा श्रृंगार है। आप मुझे सोने चांदी के आभूषण पहनाती हो, अच्छे अच्छे कपड़े पहनाती हो, ये कोई मैं श्रृंगार नहीं मानती। ऐसी बात जब सुनी तब जो है उनके मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। वो पानी से बाहर आई तो वहीं पर पति ने एक बड़ा सुंदर विमान तैयार किया, 7 मंजिल वाला मकान, उसको विमान बोलते हैं। वो आकाश में चाहे जहीं चला जाए, चाहे जब आ जाए और चाहे जिस दिशा में जाए। तो उस विमान में वो बैठ गई। बैठ करके 8ों लोकपालों के लोकपुरियों में और वो जंगलों में घूम घाम करके आई तो 100 वर्ष बीत गए, और इन 100 वर्ष में उनके एक साथ 9 कन्याएं हुई। 9 कन्या होते ही अब उनका तो यही था कि हमारे संतान होती, हम रवाना हो जाएंगे। तो ये 9 कन्याएं हुई तो वो रवाना होने की तैयारी करने लगे। देवहूति ने कहा कि आप बेटी के बाप हो, संन्यास लेने का अधिकार तभी होता है जब आप अपनी बेटी का हाथ योग्य वर में दे देंगे, तब आप संन्यास ले सकते हो, ऐसे आपको छोड़ने का अधिकार नहीं है। और मनी मन में देवहूति को बड़ी ग्लानि भी हुई कि अरे संसार में देखो ये तो मिलना और बिछुड़ना होता है, पति के साथ मेरा विवाह हुआ, 100 वर्ष तक साथ में रह रहा, पति कहते मैं तो जाता हूं, तो ये तो वियोग की बात है। संसार में किसी के साथ संग नहीं करना चाहिए, यदि संग करना हो तो भाई संत महापुरुषों के जो उपदेश होते हैं उन उपदेशों में संग करना चाहिए। ऐसी मन में उसको वैराग्य की भावना हो गई। तब कर्दम ऋषि ने कहा कि चिंता मत करो देवहूति, तुम्हारे यहाँ साक्षात भगवान अवतार लेंगे, क्योंकि भगवान की आज्ञा से ही मैंने तेरे से विवाह किया है, और उनकी आज्ञा होगी तभी मैं घर को छोड़ के जाऊंगा। तब का अच्छी बात है। थोड़े दिनों में भगवान गर्भ में आए, और गर्भ में आने के बाद अब जो है सब दिशाओं में बड़ी प्रसन्नता छा गई। ब्रह्मा देवता सब वहां पर उपस्थित हो गए, और उन सबके सामने भगवान वैसे ही प्रकट हुए जैसे कोई लकड़ी में से आग प्रकट होती है, एकदम आग प्रकट होती है, ऐसे ही भगवान वहां पर प्रकट हो गए। भगवान के प्रकट होने पर देवताओं ने दुंदुभियां बजाई, फूलों की वर्षा की, खूब आनंद मनाया सबने। ब्रह्मा जी ने फिर कर्दम ऋषि से कहा कि देख तेरी कैसी भाग्य की बात है, तूने मेरी बात मानी ना, पिता की बात मानने वाला पुत्र है वो पिता की शक्ति को प्राप्त हो जाता है, गुरु की बात मानने वाला शिष्य होता है वो गुरु के अंदर जो शक्ति होती है वो प्राप्त कर लेता है। ऐसे ही जो ऋषि मुनियों की बात मानता है तो उनकी शक्ति उस मानने वाले में आ जाती है। अच्छे अच्छे महापुरुष हो गए, उन्होंने जो सिद्धांत बनाया है उन सिद्धांत का हम पालन करेंगे तो उनकी कृपा अपने आप आ जाएगी। कोई जरूरी नहीं है कि उनके शरीर के रहते हुए ही कोई कृपा प्राप्त हो, ऐसी बात नहीं है। सुखदेव जी महाराज है ना, ये चरणदास जी के गुरु बने, चरणदास जी के गुरु। तो सुखदेव जी महाराज के कितने वर्षों के बाद हुए हैं, वो तो सैकड़ों वर्षों के बाद चरणदास जी हुए थे, पर उनके गुरु थे सुखदेव जी महाराज, साक्षात दर्शन दिया। और भी कई संत महापुरुष हुए जिनको सैकड़ों वर्षों के बाद में जो संत चले गए उन्होंने आके दर्शन दिया। तो जो है ब्रह्मा जी कहने लगे कि तुमने जो पिता की आज्ञा मानी, मेरी आज्ञा मान करके तुमने किया, देखो भगवान तुम पर कैसे प्रसन्न हुए, भगवान ही आए तुम्हारे यहाँ। और तुम्हारी नौ कन्या है, इन नौ कन्याओं का मैं बताऊं उसके अनुसार तुम विवाह कर लो। तुम्हारी कला है उसका विवाह मरीची के साथ कर दो, श्रद्धा का विवाह अंगिरा के साथ कर दो, तुम्हारी हविर्भू है उसका विवाह पुलस्त के साथ कर दो, तुम्हारी जो गति नाम की कन्या उसका पुलह के साथ विवाह कर दो, क्रिया का विवाह तुम क्रतु के साथ कर दो, ख्याति का विवाह भृगु के साथ कर दो, अरुंधति का विवाह वशिष्ठ के साथ कर दो, और शांति का विवाह अथर्वा के साथ कर दो। तो कहा बहुत अच्छी बात है, बड़े प्रेम से सबका विवाह वगैरह कर दिया, देवता लोग सब चले गए, अब अकेले में भगवान विराजमान थे। तो ये कर्दम ऋषि उनके पास गए, भगवान के पास, जो भगवान अभी पलना में थे हो वहां जाकर के भगवान कहने लगे, ये कर्दम जी कहने लगे कि महाराज आप मेरे घर यहाँ अवतार लिए हैं, इससे मालूम देता है कि आप अपने भक्तों का पक्ष रखने वाले हो। नहीं महाराज, मेरे यहाँ जन्म हो आपका, मैं तो ऐसा कोई आपका भक्त भी नहीं, कोई बहुत बड़ा ज्ञानी भी नहीं, हेलनम नगणय न है, हमारे सब अपराधों को आपने एक किनारे कर दिया और फिर आप जो है हमारे यहाँ पधारे, ये तो आपका स्वानाम पक्ष पोषण है, अपने आत्मीय लोगों का आप अपना पक्ष लेते हैं, ये बात साबित हो गई। और महाराज आप में आठ गुण है इसलिए आपको भगवान बोलते हैं, ऐश्वर्य आप में, वैराग्य आप में, यश आप में, ज्ञान आप में, शक्ति आप में, ऐसे धर्म आप में, ये सब चीजें आप में है, लक्ष्मी आप में, इन सब के कारण से आप जो है भगवान कहलाते हैं। छह चीज मिलकर के भग कहलाता है, भग ऐश्वर्यस्य समग्रस्य, सारा तो ऐश्वर्य हो, धर्मस्य यशस्य श्रिय, बड़ा पराक्रम हो, ज्ञान हो, वैराग्य हो, ये सब मिलकर के शक्ति भग कहलाती है। वो भग जिस हो वो भगवान। आप महाराज आत्मानुभूत्यानुगत प्रपंचम, अपने ही स्वरूप भूत अनुभव के द्वारा प्रपंच को अपने में लीन किए हुए हैं। प्रपंच को अपने में लीन करने का अर्थ है कि आप अपने स्वरूपभूत ज्ञान से ही संबंध रखते हैं, उसी में डूबे रहते हैं, प्रपंच से आपका कोई लेना देना नहीं। मैं महाराज अब संन्यास लेना चाहता हूं, तो भगवान कहने लगे कि ठीक है, देखो संन्यास तो आप ले, बढ़िया बात है, परंतु संन्यास में विशेष आपके क्या जागृति रहनी चाहिए कि आपके अंदर जो आत्म रूप से विराजमान जो तत्व है वो मेरा ही प्रकाश है, और ये आत्मा सब प्राणियों के हृदय में रहती है, उसी अपने आत्म प्रकाश को देखकर आप शोक रहित हो जाओ। और मैं अपने माता को बहुत बढ़िया उपदेश दूंगा, संसार का उससे कल्याण हो जाएगा, ऐसा मैं माता को उपदेश दूंगा। वो चले गए, प्रारंभ में तो उनकी ज्ञान पूर्वक साधना रही, गुणाओ भाषे विगुणे एक भक्त्यानुभाविते, वो बिल्कुल प्रत्यक शांत धीर धीर है, प्रत्यक प्रशांत धीर धीर है, प्रशांतोर्मी निबोध अधी, एकदम अंतःकरण शांत रहा उनका, जैसे समुद्र के अंदर शांति रहती है। ज्ञान की पूर्ण अवस्था होती है उसके बाद में भक्ति बढ़ती है। यदि ज्ञान के बाद भक्ति का उद्रेक नहीं होता है तो वो ज्ञान में थोड़ी सी कमी मानी जाती है। ऐसे भाई भक्ति के विषय में बहुत बातें आती हैं कि भक्ति के अंदर साधना पूर्ण होती है। भक्ति में जो प्रेम का उछाला आता है, वो प्रेम का जो उछाला है वो वास्तव में जब तक नहीं आता तब तक कितना ही बड़ा ज्ञान हो जाए, थोड़े से ज्ञान में एक स्टेज वो पीछे ही है, मुक्ति में संदेह नहीं है, फिर भी एक प्रेम का उछाला आना चाहिए। तो हमारे करदम जी को वैसा ही हुआ, इसलिए भगवत भक्ति युक्ते ने प्राप्ता भागवती गति। अब चले गए साहब ये तो, और परम गति को प्राप्त भी हो गए। इधर देवहूति के मन में आत्म कल्याण की इच्छा हुई। देवहूति ने जो है बड़े घबरा करके अपने पुत्र कपिल से कहा कि बेटा क्या कहूं तुझे, बेटा कहूं कि मैं भगवान कहूं कि पथ प्रदर्शक कहूं, क्या कहूं। मुझे ऐसा लगता है कि तुम हमारे लिए साक्षात सूर्य ही हो कि हम जो विषय रूपी अंधकार में पड़े हुए उनको आप प्रकाशित करके सही मार्ग पर लाने वाले हो। देखो ये संसार रूपी वृक्ष हमारे अंदर जो है पैदा हो गया, अब इसको तुम कैसे ही काट पीट करके बराबर करो, और अहंकार और ममता ये खूब ज्यादा हमारे में बढ़ गई है, इसको भी तुम समाप्त करो। भगवान ने कहा कि देखो माता, पहले ही पहले अपने मन से ये पूछते रहो कि हे मनीराम तुम क्या चाहते हो, तुम चाहते क्या हो। अपने आप से व्यक्ति को पूछना चाहिए कि मैं क्या चाहता हूं। मैं धन चाहता हूं कि कल्याण चाहता हूं कि भोग चाहता हूं कि विषय चाहता हूं, क्या चाहता हूं। जो व्यक्ति चाहे ना वो अपने मन से ईमानदारी से पूछे कि मैं क्या चाहता हूं। आजकल क्या है भाई, हम भजन साधन करने तो बैठ जाते हैं परंतु हम लोग ये नहीं अपने आप से पूछते कि वास्तव में भजन साधन के द्वारा जो मिलता है वो मैं चाहता हूं क्या। भीतर से भगवान की विशेष सहना के बिना हम लोग जो काम करते हैं वो हमको भार भार सा मालूम देता है, और रुचि जब पैदा होती है तब फिर थोड़ा भी काम बहुत अच्छा लगता है, बहुत बढ़िया लगता है। दुकान में सारे दिन एक रुपया भी पैदा नहीं हुआ, सुबह से लेकर शाम तक बैठे रहे, परंतु दुकान में बैठने वाले व्यक्ति को तकलीफ नहीं होती, बैठे हैं भाई हमारी हो जाए तो जाए, नहीं तो नहीं सही। उसका राग है तो वो रुचि पूर्वक बैठा है, तो रुचि के कारण से सुबह से लेकर शाम तक बैठा है, पर उसको थकावट नहीं आती। और अरुचि पूर्वक कुछ भी काम करता है तो देखता है आफत मानता है। भगवान की हमारे अंदर रुचि पैदा होनी चाहिए। यदि भगवान में रुचि है तब तो ठीक है, और यदि रुचि नहीं है तो भाई इसके विषय में मनुष्य को विचार करना चाहिए, और निरंतर उसको संतों का संग करना चाहिए। बिना संतों के संग के इसका विकास नहीं होता, क्योंकि संत है वो हमारे वास्तविक सुहृद है। इतना हितेशी हमारा दूसरा संसार में कोई नहीं है। बड़े सहिष्णु है, तितिक्षव है, कारुणिका सुहृद, सर्वदेहिनाम अजात शत्रव है, शांता साधव है, साधु भूषण। वो संत है, वो संतों के भूषण है, अजात शत्रु है, इसलिए उन संतों के बीच में बैठना चाहिए और वहां पर मेरी कथा सुननी चाहिए। वहां कथा सुनने से मेरे अंदर प्रीति पैदा होती है, भक्ति पैदा होती है, उससे मनुष्य के अंदर वैराग्य पैदा होता है। वैराग्य से जब वो संसार के विषयों से ऊपर उठता है तब वो अपने आप को मुझे अर्पित कर देता है। देवहूति ने पूछा कि महाराज भक्ति का वास्तविक रूप क्या होता है, कि देखो देवानाम गुण लिंगानाम आनुश्रविक कर्मणाम सत्व एवैक मनसो वृत्ति स्वाभाविकी तो या अनिमित्ता भागवती भक्ति ही। इतनी बात बताई। हमारा जो विषयों की तरफ इन इंद्रियों का जो प्रवाह चल रहा है वो वहां से हट करके दिव्य सत्व संपन्न एक भगवान के अंदर वृत्ति लगे उसका नाम भक्ति है, और ऐसी भक्ति होती है वो मुक्ति से भी बढ़कर होती है। और जब ये भीतर में भक्ति विशेष होती है तब उसका कारण शरीर से खूब आराम से संबंध विच्छेद हो जाता है। ये देखो बात बहुत जगह आएगी, कारण शरीर से संबंध विच्छेद में सुगमता भक्ति से आती है। ज्ञान में भी हो तो जाता है, पर भाई भक्ति की कुछ और ही बात है। भक्ति में जब भगवान में प्रेम होता है, उस प्रेम के अंदर ये जो हमारा कारण शरीर है वो प्रेम के साधनों में काम आ जाता है। हमारा बोलने का स्वभाव, चलने का स्वभाव, हमारे काम का स्वभाव, क्रोध का स्वभाव, लोभ का स्वभाव, देखो काम क्रोध लोभ मोह आदि को मिटाने में थोड़ी तकलीफ होती है, पर काम क्रोध लोभ आदि के विषय को बदलने में बड़ी सुगमता है। कामना संसार की न करके भगवान की करे, क्रोध है वो दूसरे की गलती पर न करके अपनी गलती पर करे, लोभ है वो संसार के रुपये पैसे आदि का न करके और लोभ भगवान के नाम का करे। ऐसे ये काम क्रोध लोभ को हम आराम से बदल सकते हैं, लेकिन ज्ञान के अंदर तो क्या इनको हटाना पड़ता है, हटाना थोड़ा मुश्किल है, काम क्रोध को मिटाना बड़ा मुश्किल है और बदलना बड़ा सुगम है। तो जरयत्यासु या कोशम निगीर्ण मनलो यथा, जैसे आग के अंदर कोई चीज डाल दो वो आग रूप ही हो जाती है, ऐसे भगवान की भक्ति के साथ काम क्रोध लोभ आदि को जोड़ देते हैं तो वो काम क्रोध लोभ आदि भगवान की भक्ति ही हो जाती है। उनके उदार चरित्र सुनने के कारण से भगवान ही प्रिय लगते हैं, वही गुरु है, वही सुहृद है, वही हमारे इष्ट है, सब ठीक लगता है। और ये तो मैंने तुमको भक्ति के विषय में बताया, देखो मैं तुमको अपने स्वरूप के विषय में भी कुछ बताना चाहता हूँ, ज्ञान के विषय में भी कुछ बताना चाहता हूँ। ये जो हमारी अपनी आत्मा है इसको, ये एक पुरुष है, पुरुष, और ये स्वयं प्रकाश है। प्रकाश स्वरूप माने सबको प्रकाशित करने वाला है। और विश्वम येन समन्वितम, सारा विश्व इसमें समाहित है, आत्मा में, आत्मा में विश्व समाहित है, अर्थात सारे विश्व का क्या ब्रह्मांड का ज्ञान कर लेता है आत्मा, जितना भी सो कितना भी सबका ज्ञान कर लेता है। तो जो ज्ञान करने वाला होता है वो गे को अपने में लीन कर लेता है, वही ज्ञान होता है। और ज्ञान क्या है, वो उसमें लीन हो जाता है। ऐसा ये आत्मा, ये अपने आप ही स्वेच्छा से आई हुई प्रकृति को स्वीकार कर लिया, प्रकृति को पकड़ लिया और यहाँ पर ये सुखी दुखी हो गया। जैसे आप लोग कहीं रास्ते जा रहे हो और एक बड़ा अच्छा बैग मिल गया आपको, बैग मिला आपने उठा लिया, और उधर से कोई पुलिस वाला आ रहा था, उसने कहा जी बैग किसका है, कि साहब हमारा है, कहाँ से प्राप्त किया, कि मेरे पास है पहले से ही, क्या है इस बैग में, अब क्या बोलेगी, क्या है इसमें, जानते नहीं, मेरा सामान है, आपका सामान क्या है ये तो बताओ, नहीं बता सकते कि साहब मुझे तो पता नहीं, हमको तो हमारे भाई ने दिया है, मेरे घर का ही सामान। अच्छी ठीक बात है, चेक कराओ, हमको चेक करावे तो उसमें बम मिला, बम। तो कहा कि चलो अब थाने में चलो, जेल खाने में चलो, तुम बम लिए हुए फिरते हो। अब उसको क्या जरूरत पड़ी थी थैला छेड़ने की, बताओ, किसी ने थैला इसीलिए रखा था, आवेर इसको उठाएगा और वो पकड़ा जाएगा और कुछ न कुछ विस्फोट होगा, तो वो जाने उसका काम जाने, हम थोड़ी फंसेंगे। ऐसे ही ये प्रकृति है, शरीर है, धन है, परिवार है, कुटुंब है, इसको चलते हुए को पकड़ लिया इसने, शरीर मेरा है साहब, ये जाति मेरी है, ये धन मेरा है, कुटुंब मेरा है। अरे तुम्हारा है, तुमने, तुम तो आत्मा हो भाई, तुम्हारा लेना देना ही नहीं, शरीर मेरा है साहब। अब पूछे कि शरीर तुम्हारा है तो बताओ शरीर के अंदर कितना किलो मांस है बताओ, और तुम्हारे शरीर में कितनी हड्डियां हैं, तुम्हारे शरीर के अंदर कितनी नसें हैं, तुम्हारे शरीर के अंदर कितने ज्वाइंट्स हैं, तुम्हारे चेस्ट में, तुम्हारे फेफड़े में कितने छिद्र है, तुम्हारे शरीर पर ये सब कितने बाल है, नहीं बता सकते। जो जो हमसे पूछा जा रहा है, एक का भी जवाब नहीं, शरीर मेरा है साहब। तो आपका तो वो होगा जिस पर आपका हक चले। तो आपका शरीर बीमार होता है क्या? कि बीमार होता है। आप क्या बीमारी चाहते हैं कि नहीं चाहते? नहीं चाहते और होता है, जिसका मतलब आपके शरीर पर आपकी चाहना नहीं चलती, किसी और की चलती है। हमारा कैसे हुआ? कुटुंबी हमारा कैसे हुआ? ऐसे ही मैया, ये संसार के लोग है तो आत्मा के रूप में, लेकिन संसार की चीजों को पकड़ पकड़ करके और इसके साथ मोहित हो जाते हैं। विलोक की विमुहे सद्य स यही ज्ञान गुहया, ये जो आत्मा है वो ज्ञान रूपी गुफा में बैठा रहता है और इस मोह के अंदर वो पड़ा रहता है। वो अपने स्वरूप का वो बोध करता ही नहीं है और जो करता है वही भोगता है। तो करने वाला आत्मा तो भोगने वाला भी आत्मा ही है। कहते हैं आत्मा तो शुद्ध है, बुद्ध है, मुक्त है, अकर्ता है, अभोक्ता है। ये बात तो बाद में पता चलती, पहले पता नहीं चलता है। आत्मा शुद्ध है, बुद्ध है, कर्ता नहीं है, ये तो भोगता भी नहीं है, ये बात भोगने के बाद और करने के बाद पता चलता है कि नहीं है। ये पहले पता नहीं चलता है। पहले ऐसे यदि पता हो जाए कि भाई आत्मा शुद्ध है, बुद्ध है, तो पूछो कि फिर ये अशुद्ध कर्म करता कैसे? कर लिया साहब आपने अशुद्ध कर्म? आत्मा शुद्ध है तो फिर पाप कर्म किसने किया? कोई जवाब नहीं है इसका। शरीर ने किया तो शरीर तो जड़ है, चेतन है, शरीर अपने आप तो पाप करता नहीं। खड़ी गाड़ी से एक्सीडेंट थोड़ी होता है। खड़ी गाड़ी से एक्सीडेंट नहीं हुआ, गैरेज में खड़ी है गाड़ी और साहब कोई आके कह दे कि आपकी गाड़ी ने एक्सीडेंट कर दिया, अभी अभी एक्सीडेंट कर दिया। अरे हमारी गाड़ी तो गैरेज में खड़ी है महीनों से। ऐसे ही प्रकृति है, ये ज्ञान शून्य है, इसमें कर्तृत्व नहीं आता, करने का भाव पैदा नहीं होता। क्रिया हो सकती है पर कर्तृत्व तो नहीं आता ना, कर्तृत्व तो उसमें नहीं है। तो जिसमें कर्तृत्व है उसमें ही भोक्तृत्व आएगा। तो भोगने का काम आत्मा करेगा। तो फिर पूछा कि भाई ये शरीर किन चीजों से बनता है? तो बताया कि 25 चीजों से शरीर बनता है। 24 तो ये चीजें होगी, काल हो गया, 25 क्या हो गया? कि भाई पांच महाभूत हैं, पांच इंद्रियां हैं, नहीं पांच सूक्ष्म तन मात्राएं हैं, चार अंतःकरण हैं और 10 इंद्रियां हैं। चार अंतःकरण हो गया 14 और पांच विषय और पांच ये महाभूत, इस प्रकार से 24 तत्व और काल 25वां तत्व। ऐसे करके 25 धातुओं का ही बना हुआ है। अब भगवान ने प्रकृति में क्षोभ पैदा किया तो अलग अलग चीजें बनी। कभी तो महतत्व बना, फिर देव ये अहंकार तत्व बना। अब इसमें अब यहां जो कपिल भगवान बताते हैं ना, ये देव प्रधान सृष्टि है। ये देव प्रधान माने जो है, ये हर इंद्रिय के जो देवता है उनकी है। तो ये जो जो ये महतत्व क्या है? महतत्व है ये वासुदेव है, उसका अधिष्ठान है, ये रहने की जगह है। मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये चार अंतःकरण है। तो मन का देवता तो है, मन का देवता है अनिरुद्ध, अहंकार का देवता है संकर्षण, बुद्धि का देवता है प्रद्युम्न और चित्त का देवता है वासुदेव। ये चार अंतःकरण की वृत्तियां, चारों अंतःकरण की वृत्तियों के चार देवता, इस प्रकार से ये बात है। तो ये जितनी चीजें बनी है, आकाश बना है तो, और आकाश के बाद वायु बना है तो, कि अग्नि है, जल है, पृथ्वी है, इनका सब अपने अपनी जगह उपयोग होता है। परंतु इतना होते हुए भी इन सबको गति देने वाले, शक्ति देने वाले एक भगवान ही होते हैं। भगवान के अलावा इनमें कहीं से गति बुद्धि नहीं आती। अपने प्रकृत बात पर विचार करते हैं, कि आत्मा का वास्तव में प्रकृति के साथ संबंध होता नहीं है, संबंध केवल माना गया है। प्रकृतिस्थो भी पुरुषो नाद्यते प्राकृतैर गुणैः, प्रकृति के तत्वों से व्यवहार करते हुए कभी आत्मा इनसे जुड़ता नहीं है, वो तो अज्ञान से स्वीकार करता है तब जुड़ा हुआ माना जाता है। साइकिल की चैन होती है, वो चैन उन कुत्तों के साथ में लगी रहती है तो गति चलती है, कभी उसके साथ चिपकती नहीं है। वो चैन चिपकती नहीं है तो गति ठीक चलती है। जहां कहीं भी कहीं एक दांते ने भी पकड़ लिया तो फिर वो जो है सर्कुलर नहीं चलेगा, साइकिल खराब हो जाएगी। ऐसे ही आत्मा का प्रकृति के साथ संबंध न मानने से इसका मुक्ति का मार्ग खूब अच्छा चलता है। और अहं क्रिया विमूढ़ात्मा कर्ता हम इति मन्यते, जब वो अहंकार से अपने को बंधा हुआ मानता है तब वो अपने आप को कर्ता मानकर उसमें फंस जाता है। अर्थे यविद्यमाने पि संस्कृति न निवर्तते ध्यायतो विषयानस्य स्वप्ने अनर्था गमो यथा। देखो वास्तव में संसार है नहीं, परंतु जब इसको स्वीकार कर लिया और उसके चश्मे से देखने लगे तो ये दिखता है ठीक वैसे ही जैसे आदमी स्वप्न को स्वप्न के संसार को देखता है। अब वो स्वप्न का संसार झूठा है लेकिन स्वप्न है तब तक तो वो दिखता ही है ना। ऐसे ही प्रकृति का और आत्मा का संबंध कभी नहीं हो सकता, त्रिकाल में भी नहीं हो सकता, पर वो मान लेता है तब तो भाई उसको संबंध भोगना ही पड़ता है। संस्कृति न निवर्तते, इसलिए कहते हैं कि हम जो है माता मेरी कथा सुनो, संतों का संग करो और ब्रह्मचर्य आदि का पालन करो, जो मिले उसमें संतोष रखो। और वही देखो ज्ञानेन दृष्ट तत्वेन, जहां ज्ञान का अनुभव होता हो, तत्व का अनुभव होता हो, उस ज्ञान का आदर करो। वाचिक ज्ञान का नहीं, आत्मा नित्य है, प्रकृति अनित्य है, संसार अनित्य है और जो है आत्मा कभी मरता नहीं है, व्याख्यान खूब दे दो, लेकिन क्या वो दृष्ट तत्व ज्ञान है क्या, अनुभव का ज्ञान है क्या? अनुभव के ज्ञान के बिना तोते रटंत की पढ़ाई से कुछ नहीं होने वाला है। अब प्रश्न होता है कि संसार भगवान ने बनाया ही क्यों, जब ये बनता ही है बिगड़ता ही है तो बनाया ही क्यों? कि ये बनाया इसलिए, ये इसलिए बनाया कि इसमें संसार के आने से ही हम भगवान की महिमा जान पाएंगे, और भगवान को जानने का दूसरा कोई साधन नहीं है। बच्चे से कहा जाए कि स्कूल क्यों बनाई, कि बेटा स्कूल नहीं बनेंगे तो पढ़ाई कैसे करोगे। पढ़ाई के समय में तो स्कूल जाना बहुत ही कठिन लगता है, बहुत बुरा लगता था, लेकिन पढ़ लेते हैं तो पता नहीं अच्छा किया, हमको तो गुरुजनों ने डांट डपट करके पढ़ा दिया तो अच्छा रहा। ऐसे ही सृष्टि के अंदर हम लोग जब दुख पाते हैं, हमारे में जब बचपने का ज्ञान होता है तो ये सृष्टि बनाई क्यों भगवान ने? अरे बनाई है भगवान ने इसलिए कि हम भगवान को प्राप्त कर सके, बिना सृष्टि के हम लोग प्राप्त कर ही नहीं सकते हैं। कहा अब बात समझ में आई। देवभूति ने कहा कि महाराज देखिए प्रकृति और पुरुष दोनों को आप अलग अलग करके बताते तो हैं, परंतु प्रकृति तो पुरुष पर और पुरुष प्रकृति पर एक दूसरे पर टिके हुए हैं। ये अकेला पुरुष नहीं रह सकता और अकेला प्रकृति नहीं रह सकती। एक बार ज्ञान के द्वारा थोड़ा अलग अलग कर भी लोगे तो पंडाल से बाहर जाते ही घर में वही तेरार वही मेरार वही लड़ाई वही झगड़ा वही चालू हो जाता है। तो ये ज्ञान है, ये ज्ञान ठहरता कैसे है? जैसे पृथ्वी और उसका गंध, ये दोनों आपस में अलग नहीं हो सकते, पृथ्वी और गंध साथ साथ रहते हैं, ऐसे प्रकृति और पुरुष भी तो साथ साथ रहते हैं। भगवान ने कहा नहीं, प्रकृति और पुरुष साथ साथ नहीं रहते माई। क्यों? क्योंकि प्रकृति और पुरुष ये दोनों विजातीय तत्व है। पृथ्वी और गंध और जल और रस, ये सब क्या है? एक सजातीय चीजें हैं। सजातीय चीजें सदा साथ रहती है, विजातीय चीजें साथ में रहते हुए भी साथ में नहीं रहती। तिल और चावल है, दोनों को साथ साथ में रख दो, तिल तिल ही है, चावल चावल ही है, कितना ही साथ में कर दो, एक कट्टा तिल का डाल दो और एक कट्टा चावल का डाल दो, दोनों को मिला दो। पर क्या तिल और चावल एक हो सकते हैं क्या? और दूध है उसमें पानी डाल दो, एक हो जाएंगे, क्योंकि रस रस एक है। ऐसे ही तिल और चावल ये दोनों का रूप रंग स्वरूप उपयोग दोनों का अलग अलग है। ऐसे ही प्रकृति और पुरुष दोनों अलग अलग है। ये अलगाव कब समझ में आता है कि सुत संभृतया भक्त्या, अच्छे महापुरुषों से भक्ति के विषय में सुनोगे तो ये अलगाव समझ में आएगा। और जब ये एक बार ज्ञान दृष्टि से अलग कर लेते हैं और आत्मा को अपने आप की महिमा का ज्ञान हो जाता है, फिर वो प्रकृति के चक्कर में नहीं पड़ता है। जैसे जगा हुआ आदमी होता है, वो स्वप्न के दुख में दोबारा वो आदमी दुखी नहीं हो सकता। जो जग गया वो स्वप्न के कुत्ते से स्वप्न के सिंह से कैसे डरेगा बताओ? जग गया, जब तक नींद में है तब तक तो कुत्ते से डर रहा है, स्वप्न में कुत्ता आया था वो खाने लग गया। लेकिन जग गया अब स्वप्न के कुत्ते से डरता है क्या? अब नहीं डरता। ऐसे ही भगवान की प्राप्ति हो जाने के बाद, स्वरूप का बोध हो जाने के बाद मैया वो डरता नहीं है। परंतु भगवान की भक्ति में चलो तो एक बात का ध्यान रखना कि कहीं सिद्धि विद्धि के चक्कर में न पड़ जाए। सिद्धियां आती है पर सिद्धियों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। हम लोग जो है सिद्धियों के अंदर बहुत जल्दी फंस जाते हैं। थोड़े से लोग मानने लग गए, थोड़ा आदर करने लग गए, थोड़े से ये तो होता है भक्ति के मार्ग में, ज्ञान के मार्ग में। सत्संग, ये सत्संग का क्षेत्र ही ऐसा है, आदर भी होता है, मान भी होता है, सब होता है। परंतु भाई इसमें जहां जहां हम रस लेने लगे, जहां जहां हम उलझने लगे, वहीं पर हमारा बहुत पतन चालू हो जाता है। इसलिए कहा है कि आत्यंत की यत्र न मृत्यु हास है। ये चीजें कोई खास नहीं है, क्योंकि यहाँ मृत्यु का जो है हंसना बराबर हो रहा है, हंस हंस के देख देख रही है। ज्यो ज्यो नर निधिक परे त्यों त्यों काल हसंत। मनुष्य हंस हंस करके भोग भोगता है, राजी होता है, प्रसन्न होता है, लेकिन मृत्यु उसको देखकर हंसती है। अरे तुम कितनी बात की, कितनी देर के लिए हंस रहे हो, तुम तो हमारे चंगुल में फंसने वाले हो। कथाएं आती है उपनिषदों में कि एक कबूतर को देखा एक इंद्र ने, वो देख करके यूं खड़ा रह के देता है। तो साथ के देवताओं ने पूछा कि महाराज क्या बात है? बात क्या है, ये जो कबूतर है इसकी तो आज मौत आने वाली है, आज इसकी मौत है। पर मुझे अचंभा इस बात का है कि वो बाज जिसके द्वारा ये मारा जाएगा, वो बाज अभी बहुत दूर है और इसके मृत्यु का समय भी आ रहा है, अब इतने दूर से कैसे मरेगा, ये देख रहा हूं ये देख रहा हूं। इतने में ये एक शिकारी आया और शिकारी ना आके वो दाणे वगैरह फैलाए, वो कबूतर है उसमें आ गया, जाड़ में फंस गया, जाड़ में फंस गया और वो ले जाने लगा, बहुत दूर ले गया, जितने भी बाज आ गए उसको खा गया। देख लो समय आ गया, ले कितना दूर था ये कबूतर, उधर जाने का कोई था ही नहीं, सवाल ही, इतने भी बाज वो आ गया जाड़ लेकर के, शिकारी ले गया, इतने भी बाज आ गया। तो भाई इस मृत्यु का कुछ पता नहीं है। भगवान कहते हैं कि मैं तुमको अष्टांग योग बताता हूं। अष्टांग योग, एक तो योग होता है प्राणायाम का योग, एक ये अष्टांग योग होता है भक्ति का अष्टांग योग। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि, ये आठ होते हैं प्राणायाम के योग। और यहां जो भगवान के आठ अंगों का ध्यान की महिमा बताते हैं, भगवान की पगतली कैसी है, भगवान का टकना कैसा है, भगवान की पिंडली कैसी है, भगवान की जंघा कैसी है, भगवान की नाभि कैसी है, भगवान का वक्षस्थल कैसा है, भगवान की भुजाएं कैसी है, भगवान के नेत्र कैसे हैं, भगवान का होठ कैसा है, ये आठ अंगों का यहां वर्णन होता है। परंतु इससे पहले मनुष्य को कुछ अपने व्यवहार में भी विचार करना चाहिए। एक तो अपने कर्तव्य कर्म का त्याग नहीं करना चाहिए। एक यथा लब्धेन संतोष है, दैवा लब्धेन भाग्य से जो मिले उसमें संतोष करो, खूब अच्छा मानो, जो भी है उसको खूब अच्छा मानो। खूब भयंकर बीमारी है, कहने क्या है, खूब आनंद है, खूब आनंद है। वो आनंद ही बोलेगा तो उसके आनंद ही आनंद रहेगा, और रोते रहोगे तो कोई लाभ नहीं है, कोई वो चीज जाने वाली तो है नहीं। जैसा मिले, कोई व्यक्ति मिला, कोई पति मिला, कोई पत्नी मिली, जैसी मिली है उसमें अपने को सामंजस्य बैठाना, संतोष करना चाहिए। संतोष देवा लब्धेन संतोष है। और मितमेध्यादनम शश्वत, अपने शरीर के लिए कम से कम चीज काम में ले। और सब महापुरुषों के चरणों के पास में बैठो, और इंद्रियों का विषयों से प्रत्याहार करो। प्रत्याहारश्च इंद्रियाणां विषयान मनसा रिधि, हृदय से मन से वैराग्य रखो, मन से वैराग्य। भगवान की लीलाओं का ध्यान करो, और ये मन है ये दुष्ट मार्गों में चलता हो तो इसको बुद्धि के द्वारा वापस खींच खींच करके और लाओ। और प्राणायाम के द्वारा पूरक कुंभक और रेचक, रेचक पूरक और कुंभक, इसके द्वारा अपने अपने पापों को जलाओ। इसमें पाप जलते हैं, अपने मन को वश में करेंगे तो मन के अंदर पाप है वो जल जाएंगे। जिस प्रकार से वायु और अग्नि के द्वारा लोहम ध्वात्मम त्यजति वही मलम, कैसा भी लोहा है उसको आप आग में डक दो तो आग में लगने पर वो लोहे के ऊपर आया हुआ जितना भी काट है वो सब काट साफ हो जाता है। ऐसे ही प्राणायाम के द्वारा मन के पाप दूर होते हैं। भगवान का फिर बड़ी प्रसन्नता से ध्यान करो, ध्याये शुद्ध भावे न, पहले पहले भगवान के चरणारविंद का ध्यान करो। अरे ये वो चरण है जिनसे गंगा जी निकली है। फिर भगवान के पिंडलियों का ध्यान करो, फिर भगवान के जंघाओं का ध्यान करो कि जो गरुड़ के ऊपर बैठे हुए हैं, और कभी कभी गरुड़ के शरीर की यहाँ उनके रगड़ भी लगी हुई है। भगवान के नाभि का ध्यान करो कि जो नाभि संपूर्ण भुवन कोष को आश्रय दिए हुए हैं। भगवान का वक्षस्थल है उसका ध्यान करो। ये भगवान का वक्षस्थल है क्या, ये आश्रय स्थल है। देखो आप अपने बच्चे को, आप अपने पुत्री को, आप अपने छोटे को, छोटे भाई को यदि गले लगाओ या छाती से लगा दो, छाती से लगती है। बेटी आती है बाप के छाती के लगती है, माँ के छाती से लगती है। ये क्या है, ये प्यार की जगह है, स्नेह की जगह है। तो बेटी को आशीर्वाद देते हैं, बेटे को आशीर्वाद देते, छाती से लगाते हैं। ये भगवान हम सबको छाती से लगाते हैं, ऐसे वक्षस्थल का, उदार वक्षस्थल। भगवान के कंठ का ध्यान करो, बाहुओं का ध्यान करो, और भगवान के मुख का ध्यान करो, हंसी का ध्यान, और भगवान के नेत्र का ध्यान करो, नेत्रों से कृपा बरसती है। देखो जिसको जीवन में भगवान की कृपा चाहिए ना तो वो नेत्र का ध्यान करे। और जीवन में चिंता बहुत हो रही है, तनाव बहुत है, दुख बहुत है, वो क्या करे, भगवान के हंसते हुए होठों का ध्यान करे, हंसते हुए का। देखो खूब देर तक आप ध्यान करते रहोगे हंसते हुए भगवान का, तो आपके होठ भी हंस पड़ेंगे। पर अपने होठों की तरफ देखना नहीं, अपने होठों की तरफ मत देखना कि देखो मैं हंस रहा हूं, पर ये इसका परिणाम है। मुस्कुराते हुए भगवान को देखेंगे तो भगवान वो मुस्कुराहट हमारे जीवन में बरसा देते हैं। कृपा की तरफ देखते हैं तो भगवान कृपा करते हैं, कृपा के लिए नेत्रों को देखना चाहिए। किसी आदमी का जो क्रोध है कि प्रेम है ये नेत्र से पता चलता है, तो भगवान के नेत्रों की ओर देखकर ऐसा मानो कि बड़ी कृपा है मेरे पर, बड़ी कृपा है भगवान की, बड़ी कृपा है। और दास्य भाव से देखना तो भगवान के चरणों का ध्यान करो, और ऐसे मस्त हो जाओ, ऐसे मस्त हो जाओ कि भक्त्या द्रवद हृदय उत्पुलक प्रमोदात, भक्ति से एकदम पुलकित हो जाए वो, पुलकित, उत्कंठा बढ़ जाए। और जब भाई ये मन विषयों से रहित होता है और इसमें से राग खत्म हो जाता है तो ये मन एकदम शांत हो जाता है। मन में अनेक प्रकार की पहले स्फुर्णाएं होती थी। देखो हम संसार के बाह्य दुख से इतने दुखी नहीं होते जितने मन के संकल्पों से दुखी होते हैं, ये कायदे की बात है। बाहर का दुख आता है उसमें हम लोग अपना अरे ये हो गया, अब जाने ये हो जाएगा, अब ये हो जाएगा, अब ये हो जाएगा, ऐसे करके ज्यादा दुख पाते हैं। मारवाड़ी कहावत है कि आदमी भूत से नहीं मरता, भोताल से मर जाता है। भूत से नहीं मरता, भोताल से मर जाए। जो डर है वास्तव में जो डर है उस डर से इतना नहीं डरता, अपने मन में जो संकर है अभी ऐसा हो जाएगा, अभी ऐसा, अब ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, इससे आदमी ज्यादा डरता है। इसलिए भगवान की भक्ति को मन में रखो भाई, ये दूसरे विषयों की चिंता मत करो और ऐसे मस्त रहो, ऐसे मस्त जैसे मदिरा पिया हुआ आदमी, उसके कंधे पर शरीर पर कपड़ा पड़ा है, वो कपड़ा कब तो उतर गया और कब उसने डाला था भूल जाता है, ऐसे ही भगवान की मस्ती में ऐसे मस्त रहो, ऐसे झूमते रहो कि हम जी रहे हैं कि हम मर गए हैं या मर रहे हैं, ये सब चिंताएं बिल्कुल छोड़ देनी चाहिए। वासु यथा परिकृतम मदिरा मदांध है, भाग्य में जब जाना होगा उस दिन चले जाएंगे, बैठे उस दिन बैठे हैं, न तो मृत्यु से भयभीत हो और न जीने की खुशियां मनाए, क्योंकि मृत्यु और ये दोनों ही हमसे संबंधित नहीं रखने वाली है, हमसे संबंध नहीं है इनका। और भगवान बोलते हैं कि हमारे भक्त कई प्रकार के होते हैं, सात्विक भी होते हैं, राजस भी होते हैं, तामस भी होते हैं, परंतु जो सात्विक भक्त होते हैं और सात्विक से भी ऊंचे निर्गुण भक्त होते हैं वो तो बहुत ही श्रेष्ठ होते हैं, मुझे बहुत प्यारे लगते हैं। सालोक्य सारष्टि सामीप्य सारूप्यकत्वम अप्युत, सालोक्य माने भगवान का लोक मिलना, ये भक्ति है, और सारष्टि भगवान के समान ही हमको शक्ति मिले, भगवान चतुर्भुज वाले हम भी चतुर्भुज वाले, और भगवान की जो शक्तियां वैसी हमारे अंदर आ जाए, और भगवान जैसा रूप मिल जाए, भगवान की समीपता मिल जाए, और सायुज्य माने भगवान में एक एक हो जाए, भगवान के अंदर ही हम मिल गए, ऐसी ये मुक्तियां होती है। लेकिन मेरा भक्त जिस समय में भक्ति में डूबता है, प्रेम में डूबता है, तो वो ये मुक्ति को नहीं चाहता। मुक्ति निरादरी भक्ति लुभाने, वो तो प्रेम में एक अलग ही मस्ती देखता है। क्या महाराज हम आपको बैकुंठ ले जाए? नहीं महाराज, बैकुंठ मत ले जाना हमको, हमको तो पृथ्वी पर ही भेजना वापिस। क्यों? यहाँ आपकी भक्ति करेंगे, कथा सुनेंगे, मस्त रहेंगे, बैकुंठ में क्या रखा है? बैकुंठ में कुछ नहीं है, आपके दर्शन हरदम थोड़ी होते हैं बैकुंठ में। बैकुंठ में सुविधा बहुत है, शरीर चिन्मय है, बीमारी सिमारी कुछ नहीं होती, सुख सुविधा आराम बहुत है, परंतु वहां कथा थोड़ी होती है, वहां कथा नहीं होती, वैकुंठ में कथाएं नहीं होती, कथाएं तो भाई पृथ्वी लोक पर होती है, नाम जप नहीं होता, संतों के दर्शन नहीं होते, वहां सुख सुविधा में पड़े रहो, हम महाराज बैकुंठ नहीं चाहते। ये मानव शरीर सबसे श्रेष्ठ है, सबसे श्रेष्ठ है, और भी बताए कई प्राणी एक एक से श्रेष्ठ, एक एक से श्रेष्ठ, सबसे श्रेष्ठ ये मानव शरीर है। इस मानव शरीर में सबसे ऊंचा साधन मेरी भक्ति करना है, इससे ऊंचा कोई साधन नहीं है। और काल के विषय में पूछा तो कहा कि काल की शक्ति को यदि मैं नहीं रखूं तो मैया ये सारे संसार की व्यवस्था गड़बड़ हो जाए, मेरे कारण से ऋतुएं बनती है, मेरे कारण से ही नदियां जल देती है, मेरे कारण से ही पर्वत है ये पृथ्वी को धारण किए हुए है, मेरे कारण से ही ये सब जो है समुद्र, पृथ्वी के चारों तरफ रहने वाले समुद्र है वो कायम है, नहीं तो पृथ्वी को ये डुबा सकते हैं, सब मेरे भय से काम चलता है, ऐसे मनुष्य की जो जीवन की आयु वो भी मेरे कारण से ही चलती है। जनस्य एतस्य जनो नूनम, ये जो मनुष्य है, ये मनुष्य कितनी कितनी यहाँ संसार में आशाएं बनाता है, उनका भी मैं काल शक्ति के द्वारा नाश करता हूँ, नहीं तो आदमी अपने को कितना मान लेगा और क्या क्या उसकी दशा हो जाएगी। इसका जो जीवन है उस जीवन का भी मैं नाश करता हूँ, यदि जीवन का नाश न करूं, शरीर का नाश न करूं, तो जीव का संकट कभी मिटे ही नहीं। देखो जब ये मनुष्य कमाता है, दुनिया की क्या रीति है, कि जब ये मनुष्य कमा कमा के देता है, खिलाता है, हमारे अनुकूल चलता है, तो सब उसके साथ ठीक ठीक बात करते हैं, और वो भी अपने स्त्री पुत्र आदि के साथ बहुत मस्त रहता है। परंतु जब वो लोगों के भरण पोषण में असमर्थ होता है, तब भाई लोग उसका धीरे धीरे त्याग कर देते हैं, जैसे बूढ़े बैल का त्याग करते हैं। और फिर वो बूढ़ा हो जाता है, तब वो लोग सोचते हैं कि अभी सुधर जाए तो बड़ा अच्छा, ऐसा बोलते हैं, सुधर जाए तो बड़ा अच्छा। ये तो बोली है, मन में क्या समझते हैं कि मर जाए तो बड़ा अच्छा। जरयो पात तवई रूपियो मरना भी मुखो गृह है। लोग सब उसका भीतर ही भीतर परिवार वाले लोग अपमान सा करते हैं। ध्यान से सुनना, मरते समय में कफ की मात्रा ज्यादा होती है, तो कफ शरीर में बढ़ता है और वो श्वास लेने वाले यंत्रों में कफ छा जाता है। अब श्वास लेते तो कर कर घर घर आवाज आती रहती है, और वो जो है कुछ बोलना चाहता है, वाच्य मानो पे न ब्रूते, बोल सकता नहीं है, स्मृति भी उसकी नष्ट हो जाती है, और सदा कुटुंब के भरण पोषण में ही रहा, और फिर जो है उसके शरीर में बहुत वेदना होती है, वेदना होने से वो बेहोश हो जाता है, और बेहोश हो जाने के बाद जब उसकी स्मृति वगैरह कुछ नहीं रहती, इतने में ही यमराज जी के दूत आते हैं, और दो दूत आते हैं, उनको देख करके वो डरता है, तो वो मलमूत्र का त्याग करता है, और फिर वे यमराज जी के दूत उसको 100,000 योजन मार्ग तक मारते हैं, पीटते हैं, और गरम गरम वो जगह होती है, तांबे की जगह गरम गरम तांबा, उसके ऊपर बालू बिछाया हुआ, और उसके नीचे आंच की भट्टियां, भट्टियों की आंच, और फिर जो है ऊपर से कोड़े की पिटाई, ऐसे करके उसको वहां पर जो है 3 मुहूर्त में वो रास्ता पार करना पड़ता है, और फिर उसको तरह तरह से कष्ट भोगना पड़ता है, कितने कितने नरक ये सब आगे आ जाएंगे। तो ये केवल कुटुंब के भरण पोषण में लगा रहा उसकी ये बात है। तब कभी भगवान कृपा करते हैं और वो कभी मानव शरीर में आता है, तो मानव शरीर में आता है तो पहले वो अन्न में आता है, अन्न में आने के बाद में फिर पिता के शरीर में आता है, फिर पिता के शरीर से वो स्त्री के शरीर में जाता है, और फिर उसका धीरे 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 वहां पर क्रम से विकास होता है, उसके अंदर भी फिर मांस आदि का बनना चालू होता है, हड्डियों का बनना चालू होता है, और जहां वो माता के शरीर में रहता है वहां बहुत कीड़े रहते हैं, वो कीड़े उसकी कोमल कोमल त्वचा को खाते हैं, उन कीड़ों को उसके खाने में बड़ा सुख मिलता है, और उनके कीड़ों के काटने से वो बहुत परेशानी में पड़ता है जीव, वो बेचारा अपनी रक्षा भी नहीं कर सकता है। उधर वो माँ है, कभी चरपरे खा ले, कभी ठंडा पी ले, कभी गर्म पी ले, उससे उस बालक के ऊपर बड़ा जो है बुरा असर पड़ता है, सर्वांगोत्थित वेदना है, सब अंगों में उसके वेदना होती है, चरपरा खा लिया, चटपटा खा लिया, मिर्ची बड़ा खा लिया, उस बच्चे पर वो उसके बहुत बुरा असर पड़ता है, और वो उसका सिर तो रहता है नीचे, पैर रोता है ऊपर, जैसे कोई पिंजरे में पक्षी लटकता हो ऐसे वो लटकता रहता है, और उसको 100 जन्मों की बात याद आती है, और वो एक ऋषि के समान भगवान से प्रार्थना करता है। देखो गर्भ में वो बालक भगवान की प्रार्थना करता है, और हम उसके साथ क्या करते हैं, उसका गर्भपात कराते हैं, उसको काटते हैं अंदर से, वो अंदर से शस्त्र ज्यादा काटते हैं, उसकी रील ली गई, ये ऐसा जो है ना कैमरा लगा करके और उसकी रील ली गई, तो जो डॉक्टर ये ऑपरेशन करता था उसी डॉक्टर ने उस रील को देखा तो वो अपने क्लिनिक को छोड़ करके भग गया वो, अरे राम मैंने कितना पाप किया है। वो बच्चा वहां इधर उधर बचने के लिए घूमता, जो ही शस्त्र वहां पहुंचता है बच्चा देख डर जाए मुझे मारेगा, ये मारेगा कहां जाए बेचारा। वो शस्त्र आखिर उसको कभी तो पैर को काटता है, कभी हाथ को काटता है, वो बेचारा भगवान की भक्ति कर रहा था, भगवान को याद कर रहा था, उसको काटते हैं, काटने के बाद कहते हैं साहब अब आपकी सफाई हो गई, ये सफाई हुई है कि भयंकर पाप मोल लिया है। महाराज जी कहते थे कि माताएं हमारे देश में, हमारी संस्कृति में माताओं का कितना ऊंचा स्थान, वे माताएं जाने क्या हो गया गर्भपात के लिए कोई संकोच नहीं करती है, गर्भपात के लिए तैयार हो जाती है। पुराने जमाने में कभी कोई गर्भपात होता था तो उसकी कहानी बन जाती, गर्भपात करवा लिया इसने। गर्भपात कोई अवैध संतान होती तो अवैध संतान के लिए गर्भपात कराती थी तो वो एक चर्चा का विषय बनती थी, ताकि कोई अवैध संतान होवे ही नहीं, समाज में उसको जो है सम्मान नहीं मिलता था, अवैध संतान हो गई तो उससे लोग डरते थे, डरने से वो अवैधता से बचते थे। परंतु आजकल तो भाई धड़ल्ले से कुछ भी करो, बोले कैसा भी हो। महाराज जी ने कहा था कि इलाज के नाम पर कुछ भी खा लो पी लो, इलाज के नाम पर कुछ भी कर लो, इलाज कर रहे हैं सभी तो इलाज है, ये इलाज है ये भाई। जब भागवत आदि शास्त्र सत्य है तो इसके बराबर कोई पाप नहीं है। अब वो बेचारा अंदर ही अंदर पड़ा हुआ जीव भगवान से प्रार्थना करता है, हे महाराज मैं आपके उन चरणों की शरण स्वीकार करता हूं जो चरण सारे संसार की रक्षा के अंदर लगे हुए हैं। मैं तो महाराज अपने कर्मों से बंधा हुआ हूं और आपकी माया के सहारे से टिका हुआ, मैं यहां निर्माइक और निरुपाधिक आपके स्वरूप को प्रणाम करता हूं। मैं महाराज पांच भूतों में बंधा हुआ हूं और आप पांच भूतों से रहित है, मैं आपको वंदना करता हूं। महाराज आपकी माया के द्वारा गुण कर्म के बंधन में मैं फंस गया, अब मैं आपकी कृपा के बिना क्या उपाय है कि इस माया से निकल सकता हूं, सिवाय आपकी कृपा के अलावा दूसरा मेरे पास कोई साधन नहीं है। आज मुझे सौ सौ जन्मों के पाप याद आते हैं और उन पापों से बचने की मन में इच्छा पैदा होती है, आप ही के द्वारा दिया हुआ ज्ञान है, इसलिए महाराज मेरे करतूतों की तरफ मत देखिए। अब मैं तो यहां से निकलना चाहता हूं, अब आप मुझे जल्दी बाहर निकालिए, अब मैं अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार आप ही का स्मरण करूंगा। महाराज मेरे पाप को मत देखिए, स्वेनैव तुष्यतु, आप अपने ही गुणों की ओर देखिए। हे दीननाथ आपका ये नाम तभी तो सार्थक होगा जब मेरे जैसा दीन व्यक्ति आपकी शरण में आएगा, ज्ञानी महात्मा शरण में आवे, आप उनका उद्धार करें, उसमें आपकी क्या विशेषता है, कोई दीन हो कोई पतित हो वो आपकी शरण में आए तब तो कोई बात भी हो। फिर थोड़ी देर बाद में वही प्राणी कहता है कि महाराज मैं तो आपके इस गर्भ से निकलना नहीं चाहता हूं, क्योंकि इस गर्भ में से निकलने के बाद मैं फिर आपकी माया के अंदर पड़ जाऊंगा। मिथ्या मतिर यदनुसंस्कृति चक्र में तत्, मेरी बुद्धि खराब हो जाएगी माया के द्वारा और फिर मैं संसार के जाल में फंस जाऊंगा, यही पड़े रहने दो महाराज, दुख पाऊं तो भले ही पाऊं, आपकी भक्ति तो हो रही है ना, कोई बात नहीं। ऐसे वो बार बार भगवान से प्रार्थना करके अंतिम बात बोलता है कि महाराज मैं वास्तव में मामे भविष्य उपसादित विष्णु पाद है, अब महाराज बहुत हो गया सो हो गया, अब मैं ज्यादा दिन तक ये कष्ट सहन नहीं कर सकता हूं, आप मुझे क्षमा कीजिए क्षमा कीजिए। तब भगवान उसको वहां से छोड़ते, प्रसूति वायु से एक प्रसूति वायु निकलती है, उस वायु से वो बच्चा बाहर आता है, बाहर आते समय में उसकी यहां पर एक जो है नस है, वो नस दब जाती है, निरुच्छ्वास है, एक क्षण के लिए श्वास रुकता है, उस श्वास के रुकने से उसकी सोब जन्मों की बात याद वो गायब हो जाती है। थोड़ी देर के लिए श्वास रुकता, ऐसा श्वास रुका सब याद गायब हो गई, और वो जब बाहर आता है तो बाहर आने के बाद फिर भाई वो उस ज्ञान को याद करता है, वो ज्ञान उसको मिलता नहीं है। अब देखो मैया इस संसार के अंदर दुख ही दुख है, देखो इस संसार के अंदर बल बाल्यावस्था में कितना दुख है, उस बच्चे को गोद में खिलाते पिलाते पर वो अपनी मक्खी मच्छर भी नहीं उड़ा सकता, तुदंती आव त्वचम दंशा, उसकी कोमल कोमल चमड़ी है, कच्ची कच्ची चमड़ी है, उसको मक्खी मच्छर काटते रहते हैं और वो रुदंतम वो रोता रहता है। और भाई फिर धीरे धीरे जब जवान होता है ओह जवान हो जाने के बाद तो उसको बात बात में क्रोध आता है, अपने मन की बात पूरी नहीं होती है तो अज्ञानाद इद्धम अन्युः, अज्ञान के कारण से अज्ञान तो भरा हुआ है ये बात बात में क्रोध करता है और क्रोध करता हुआ सुख को प्राप्त होता है। ये मेरा है, ये ऐसा है, जवानी में अंधा हो जाता है आदमी अंधा। और भाई जवानी में विषयों के संग में आदमी पढ़ करके तमो विशति पूर्ववत बिल्कुल अज्ञान में डूब जाता है। इसलिए कहा है कि भाई जवान अवस्था हो तो संगम न कुर्यात सोचेसु क्रियोषित क्रीड़ा मृगेशु च। एक तो स्त्रियों के ऊपर आसक्त रहने वाले पुरुषों का भोगियों का संग नहीं करना चाहिए, क्योंकि जितना भोग के संग से मनुष्य का पतन नहीं होता उतने भोगियों के संग से पतन होता है। इस विषय में सावधान रहना चाहिए। और कहा भी है कि भाई ये स्त्री रूप जो माया है इसको सिवाय भगवान नारायण के अलावा ऐसा कौन पुरुष है जो अपने बल पर इसको जीत सकता हो। भगवान नारायण ने जीता इनको, जो आगे कथा आ जाएगी जब ये भागवत की समाप्ति के समय उनकी कथा आ जाएगी। संगम न कुरियात प्रमदासु जातु योगस्य पारम परमारु रुक्षु मत्सेवया प्रति लब्धात्म लाभो वदंतिया निरयद्वारमस्य। भाई इसमें लिखा है कि स्त्रियों का जो संग होता है वो वास्तव में नरक का एक तरह से बेरोक टोक दरवाजा है। भगवान जो है वो जब स्मृति में रहते हैं तब तक तो बिल्कुल ठीक है, यदि भगवान को भूल गए तो फिर ये स्त्री रूप जो माया है ये माया ऐसी पास में आकर के ऐसी ठगती है जैसे कुएं के ऊपर कोई पतली पतली लकड़ी रख दी जाए और फिर उस पर घास रख दी जाए और फिर कोई आदमी अकस्मात वहां चला जाए कुएं में गिर जाए, ऐसे भाई वो कुएं में गिर सकता है। और मृत्यु से कभी घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि मृत्यु क्या चीज है कि इंद्रियों के द्वारा विषयों का दर्शन नहीं होना यही मृत्यु है और इंद्रियों के द्वारा विषयों का दर्शन होना यही जन्म है। इसलिए तस्मा न कार्य संत्रासो न कार्पण्यम न संभ्रम है। दो प्रकार की मुक्ति होती है, एक सद्यो मुक्ति एक क्रम मुक्ति, वो मैंने बता दी। और भाई मरने के बाद गति दो होती है, एक तो चले जाते परब्रह्म परमात्मा में लीन हो जाते और एक चंद्र लोक में जाते हैं और फिर वहां जाकर के अपने भोगों को भोगने के पश्चात वापिस यहाँ मानव शरीर में आते हैं। जो केवल घर गृहस्थ को सकाम भाव से कर्म करने वाले हैं वो चंद्र लोक में जाते हैं और निष्काम भाव से जाते हैं वो सूर्य लोक में जाकर के सदा के लिए मुक्त हो जाते हैं। ये हमने तुमको ज्ञान सुनाया है। देखो माता एतावाने योगेन समग्रेणे योगिनः युजते यविमतो यर्थो यद असंगसु कृष्णशः। बहुत बढ़िया श्लोक बताया है, बहुत ही बढ़िया बात है कि सारे योगों का समग्र योगों का यही खास अर्थ है, सब साधनाओं का अर्थ ही संसार से आसक्ति का त्याग हो जाए, बस सब साधनों का पर्यवसान इसी में ही हो जाता है। ये हमने आपको ज्ञान कहा है, ये ज्ञान कैसा है कि ज्ञान योगस्य मन निष्ठो और नैर्गुण्यो भक्ति लक्षण है। ये अटपटे शब्द दिए हैं, ज्ञान योग में तो आना चाहिए कि ज्ञान योगो नैर्गुण्यो और मन निष्ठो भक्ति लक्षण है, ऐसा देना चाहिए। पर उल्टा दिया कि मैंने ऐसा ज्ञान दिया है, ऐसा ज्ञान दिया है जिसमें मेरे अंदर भक्ति बढ़े और मैंने ऐसी भक्ति बताई है कि जिससे तुम गुणातीत हो जाओ। कितनी विचित्र शब्दावली है, ऐसा ज्ञान दिया कि जिससे तुम्हारे अंदर मेरी भक्ति बढ़े। कहना यह चाहिए कि ऐसा ज्ञान दिया जिससे तुम गुणातीत हो जाओ और ऐसी भक्ति मैंने कही है जिसमें मेरे अंदर तुम्हारी निष्ठा बढ़े। पर उल्टा कहा कि ऐसा ज्ञान कहा है कि जिसमें मेरे प्रति निष्ठा बढ़े और मैंने ऐसी भक्ति कही जिससे तुम गुणातीत हो जाओ। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ यह हुआ कि भक्ति से निश्चित गुणातीत होता है और असली ज्ञान से उसको निश्चित भक्ति मिलती है। ज्ञान और भक्ति का परिणाम जो होता है वो एक ही होता है। और बता दिया कि भाई देखो, जैसे इंद्रियों के द्वारा एक विषय का ज्ञान होता है, ऐसे ही सब साधनों के द्वारा एक ही परमात्मा का बोध होता है। अब ये घड़ी है, अब इस घड़ी को नेत्र भी देखता है, और इसमें जो आवाज आती है अलार्म वगैरह की कोई भी आवाज वो कान सुनता है, और इस जो है इसको ये कठोर है कोमल है इसको त्वचा देखती है, और इसका स्वाद भी देखा जाए तो जीभ देखती है, पर एक ही चीज का ज्ञान होगा, एक चीज का। जैसे नाना इंद्रियां एक वस्तु का ज्ञान करती है, ऐसे ही सारे के सारे साधन है, सब साधन मिलकर के एक परमात्मा के विषय में बोध कराती है। एको नाने यते तद्वत भगवान शास्त्र वर्तम भी। ये हमने तुमको ज्ञान दिया है मैया, इस ज्ञान को अश्रद्धालु पुरुषों को मत कहना, जो श्रद्धा नहीं रखते हैं उनको ये बात मत कहना कि क्या है भगवान अपनी बड़ाई की बात बोलते। कई लोगों ने कहा भी है कि गीता में क्या है भाई, भगवान तो अपनी बड़ाई करवाते हैं कि माम एकम शरणम व्रज, मेरी शरण में आओ, ये तो सभी कहते हैं। कोई भी होता है वो अपने में लगाने के लिए बोलता है, तो भगवान भी अपने में लगाने के लिए बोले। तो कहते हैं उनके मन में श्रद्धा नहीं है, तो ऐसों को ये बात कहनी भी नहीं चाहिए। ये हमने तुमको ज्ञान दे दिया मैया। देवहूति ने कहा कि भाई तुम्हारे ज्ञान से तो मेरा अज्ञान पटल सब खुल गया, सब ध्वस्त हो गया, अज्ञान नाम की चीज रही नहीं। अज्ञान कोई पदार्थ थोड़े ही है, अज्ञान नाम की कोई ऐसी चीज थोड़े ही जो अंदर से आई और अंदर से निकल गई, बाहर से अंदर आ गई और अब अंदर से नहीं, ऐसा तो है नहीं। ज्ञान का ठीक ठीक समझना नहीं हो रहा था, वो ठीक समझ आ गई, इसी का नाम ज्ञान है। महाराज मैं तो आपकी बहुत महिमा जानती हूँ, कई अवतार आपने लिए, आपका तो कोई बहुत नीचे से नीचा काम करने वाला चंडाल व्यक्ति भी नाम लेता है तो भी महाराज वो बहुत बड़ी भारी तपस्या कर चुका होता है। तेपुस तपस्ते जुहु सस्नुर आर्या, उन्होंने बहुत बड़ा तप कर लिया, जिसने नाम का जप कर लिया, सबसे बड़ा तप कर लिया, सबसे बड़ा यज्ञ कर लिया। हे प्रभु मैं आपको प्रणाम करती हूँ। फिर कपिल भगवान वहां से विदा हो गए और ईशान दिशा की तरफ चले गए। वे ही कपिल भगवान आगे जाकर कपिल संगीता का निर्माण किए और सांख्य शास्त्र के प्रवर्तक बने। सांख्य शास्त्र में दो कपिल आते हैं, एक कपिल तो वे हैं कि जो ईश्वर को नहीं मानते, एक ये कपिल है कि जो साक्षात ईश्वर के अवतार ही है, वो चेतन पुरुष और प्रकृति दो को ही मानते हैं। प्रकृति को तो मानते हैं कि वो है अंधी, और पुरुष को मानते हैं कि वो है लंगड़ा। वो लंगड़ा और अंधा दोनों आदमी मिलते हैं तब उनकी यात्रा हो जाती है। ऐसे प्रकृति तो है अंधी, उसको तो दिखता नहीं, और उसके ऊपर बैठ गए लंगड़े ये पुरुष, क्या इधर चलो दाएं चलो बाएं चलो, उसकी यात्रा हो जाती है, दोनों का काम चलता है। ऐसे ये प्रकृति और पुरुष को मानते हैं। ये हमारे जो कपिल भगवान है भागवतकार, वो ऐसा नहीं मानते, पुरुष को लंगड़ा नहीं मानते, और प्रकृति है उसको क्रियाशील मानते हैं, और पुरुष होता है ये अभोक्ता है अकर्ता है ऐसा मानते हैं, पर इसको ईश्वर का स्वरूप साथ में मानते हैं। अस्तु। इधर जो है ये देवहूति जी हैं, भगवान का ध्यान करते करते भगवान के स्वरूप में ही रही, उसको सारा संसार भगवान का रूप नजर आया है। नजर आने का अर्थ ये नहीं है कि ये टैण है वो टैण नहीं दिखेगा, टैण तो टैण ही दिखेंगे, परंतु ये भगवान से अलग नहीं है ऐसा दिखेगा, ये मेरा नहीं है ऐसा दिखेगा, शरीर मेरा नहीं है, ये ममता और अहंता उनकी मिट जाती है। तो निवृत्त जीवा पतित्वात, उनका जीव भाव समाप्त हो गया और वो अपने स्वरूप में मस्त रही, आनंद में रही, और अंत में देवहूति जी भी वहां पर एक नदी बन करके और वहां पर प्रवाहित होने लगी। ये हमने आपको कपिल भगवान का उपदेश सुनाया। मैत्रेय जी महाराज आगे बोलते हैं कि देखो, ये जो भगवान ब्रह्मा जी से मनु और शत्रुपा हुए थे, तीन कन्या हुई थी और दो बेटा हुए थे, फिर भी शत्रुपा ने क्या किया कि आकुति का विवाह जब रुचि के साथ किया तो ये शर्त रखी कि तुम्हारा बेटा होगा उसको हम गोद लेंगे, उसके बेटे वे भगवान यज्ञ। और यज्ञ की पत्नी कौन होती है? दक्षिणा। और उससे हुए देवता लोग, और देवता लोग आकर के भाई उन्होंने जो है यज्ञ में बाधक तत्व थे उनका उन्होंने नाश किया। विदुर जी महाराज कह रहे हैं कि महाराज देवहूति के जो कन्याएं हुई थी उन कन्याओं में हमारे अत्रि ऋषि के ये तीन बेटा पैदा हुए, दुर्वासा हुए, चंद्रमा हुए और दत्तात्रेय जी हुए। इसका कारण क्या था कि ये दत्तात्रेय ये अत्रि ऋषि थे ना, उन्होंने भगवान जगदीश्वर की प्रार्थना की, हे जगत के स्वामी, भगवान की आराधना में जगत का थोड़ा सा मिश्रण कर दिया उन्होंने, तो तीनों आगे ब्रह्मा विष्णु महेश कि मैंने तो एक को बुलाया था कि आपने कहा हे जगत के स्वामी आपको आराधना करनी चाहिए, हे मेरे स्वामी, तब तो केवल एक भगवान ही आते, हम तो तीन आए क्योंकि जगत से तो हम तीनों का संबंध है। तब अत्रि को पता चला कि अरे एक निष्ठा, इसको बोलते एक निष्ठा। आजकल लोग क्या बोलते हैं, एक निष्ठा करते, हम तो राम को मानते, क्या है तुम्हारे कृष्ण में? दूसरे का खंडन करना उसी को ही मानेंगे कि हमारी हमारे स्वरूप में निष्ठा है, ये निष्ठा नहीं होती भाई, ये तो केवल दुराग्रह है, दुराग्रह। हम शिव जी को मानते हैं तो राम जी की निंदा करेंगे, हम कृष्ण को मानते हैं तो हम शिव जी की निंदा करेंगे, ये कोई एक निष्ठा है क्या? ये एक निष्ठा नहीं है। एक निष्ठा माने केवल भगवान को मानेंगे, संसार की कोई कामना नहीं करेंगे, ये एक निष्ठा है। लोग करते हैं भाई हम जो है हमारी तो निर्गुण में निष्ठा है साहब, हम सगुण को बिल्कुल नहीं मानते, सगुण सब मायावी होते हैं। सगुण वाले कह रहे हैं कि निर्गुण का कोई आता नहीं, कोई पता नहीं, कोई आधार नहीं, कोई बात नहीं, ये निर्गुण वाले यही बात करते हैं, दोनों ही जो है गलती पर है। भगवान को निर्गुण मानो, सगुण मानो, राम मानो, कृष्ण मानो, कैसे ही मानो, लेकिन साथ में जगत को मत मानो, वो होती है एक निष्ठा। अत्रि ने कहा हे जगत के स्वामी, उनको जगत का भी कुछ न कुछ स्वाद लेना था, तो ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों आए। तो ब्रह्मा जी से तो चंद्रमा हो गया, कृपा की हासिलो एक एक संतान जो है हम तुमको वरदान देते हैं, हमारे वरदान से एक संतान होगी, तो चंद्रमा हो गए। विष्णु से दत्तात्रेय हो गए, शंकर जी से दुर्वासा हो गए, ऐसे भाई उनके तीन संतान हुई थी। और आकुति के लिए बता दिया उसके यहां यज्ञ का जन्म हुआ था। अब प्रसूति है, उसका विवाह दक्ष के साथ हुआ था, उससे उनके 16 कन्याएं हुई, तो 13 तो उन्होंने धर्म को दे दी, एक अग्नि को दे दी, एक पितरों को दे दी, एक शंकर भगवान को दे दी, ऐसे करके इनके 16 हुए। अब जो धर्म को संतान दी उसमें से नरनारायण का जन्म हुआ, क्योंकि धर्म की पत्नी का नाम था मूर्ति और मूर्ति में से नरनारायण का जन्म हुआ। देखो क्या नाम है, वो पिता का नाम है धर्म, पत्नी का नाम पिता, और मतलब पत्नी का नाम है मूर्ति, पति का नाम है धर्म और पुत्र का नाम है नारायण, अर्थात धर्म का पालन करोगे, धर्म पूर्वक मूर्ति की सेवा करोगे तो आपको नारायण के दर्शन होंगे। लोग कहते हैं आप मूर्ति पूजा करते हो, अरे भाई मूर्ति पूजा हमारे शास्त्र में कहीं नहीं आती, मूर्ति पूजा झूठ बोलते हैं जो कहते हैं कि मूर्ति पूजा करते हैं, हिंदू लोग मूर्ति पूजा करते हैं, बिल्कुल नहीं करते। कोई कह दे कि आप मूर्ति पूजा करते हो तो भाई हम उनके गुलाम बन जाए, कब करते हैं हम मूर्ति पूजा, कि क्या बात करते हो, ये मंदिरों में क्या है, मंदिरों में भगवान का स्वरूप है, ये स्वरूप है तो मूर्ति नहीं, नहीं हम पूजा क्या करते हैं, हम बोलते क्या है वहां, हम वहां पर बोलते हैं कि लोकाभिरामम रणरंग धीरम, हम बोलते हैं वहां पर शशंक चक्रम सकिरीट कुंडलम, हम वहां पर बोलते हैं कस्तूरी तिलकम ललाट पटले, हम और क्या बोलते हैं, हम मूर्ति की पूजा करते ही नहीं है, हम भगवान के श्री विग्रह को भगवान का प्रतीक मान करके हमारे मन के जो स्तोत्र है उनसे भगवत बुद्धि से पूजा करते हैं। मूर्ति की पूजा तब हो जब कहे कि वाह वाह देखो कहां से ये पत्थर आया है, किसे कारीगर ने इसको बढ़िया बनाया है, कितना चिकना है, कितना बढ़िया है। केवल उस पत्थर ही पत्थर का मंदिर में जाकर गुणगान करें तो मूर्ति पूजा है, और वहां जाकर यदि हम भगवान का गुणगान करते हैं तो भगवान की पूजा हुई कि मूर्ति की पूजा हुई? मूर्ति की पूजा नहीं है, भगवान की पूजा है। व्यर्थ में ही हल्ला कर दिया, मूर्ति पूजा मूर्ति पूजा मूर्ति पूजा, मूर्ति की कोई पूजा नहीं है, भगवान की पूजा है। और हमारे शास्त्र में तो यहां तक कहा है कि वो भगवान जो पुरुष के रूप में आपने मंदिर में स्थापित किए हैं उन्हीं भगवान की नकल लेकर जीती जागती मूर्तियां हैं, इनके साथ आप यथोचित बर्ताव करो कि हम भगवान के साथ ही बर्ताव कर रहे हैं। ये प्रेरणा लेने के लिए मंदिर है। मंदिर में मूर्ति पूजा का अर्थ क्या हुआ, भगवान की पूजा का अर्थ क्या हुआ कि भाई जिसकी हमने मंदिर में पूजा की वो ही यहाँ पर जीती जागती मूर्तियां हैं, इनके साथ यथा योग्य बर्ताव करो तो भगवान की वो पूजा सफल होती है। हमारे नरनारायण का जब अवतार हुआ तो देवता लोग बड़े प्रसन्न हो गए, उन्होंने दुंदुभियां बजा बजा करके भगवान का स्वागत किया कि वाह महाराज आप अपनी माया से संसार को बनाते हैं, जैसे आकाश में भेद नहीं होता ऐसे आप में भी किसी प्रकार का भेद नहीं होता, ऐसे ऐसे उनकी पूजा करते हैं। कहते हैं कि भगवान शंकर के सती नाम की पत्नी थी, उसके कोई संतान नहीं हुई क्योंकि उन्होंने अपने पिता के क्रोध के कारण से, पिता ने पति का अपमान कर दिया उस कारण से उन्होंने जो है अपने शरीर को भस्म कर लिया था। विदुर जी महाराज कहते हैं कि महाराज ये कथा तो सुनाओ, ससुर और जवाई ये तो आपस में बहुत स्नेह रखा करते हैं, ससुर और जवाई लड़े और वो भी भगवान शंकर जैसे जो है जवाई मिले और दक्ष प्रजापति, वो कैसे इनकी आपस में खटपट कैसे हुई? कहते हैं देखो जितनी भी लड़ाई होती है उस लड़ाई का कारण केवल स्वार्थ और अहंकार होता है। एक सभा लगी हुई थी बड़े बड़े महर्षियों की और देवर्षियों की प्रजापतियों की, उसमें भगवान शंकर भी बैठे हुए थे, ब्रह्मा जी भी बैठे हुए थे, हमारी दक्ष जो प्रजापति वो नजागत करते करते देरी से आए सभा में। देरी से आए तो भाई सब लोग तो खड़े हो गए, हमारे भगवान शंकर खड़े नहीं हुए, ब्रह्मा जी भी खड़े नहीं हुए। ब्रह्मा जी तो नहीं खड़े हुए तो ठीक है भाई, बेटा ही तो है दक्ष उनका, क्योंकि उनके अंगूठे से पैदा हुआ हुआ था दक्ष, तो दक्ष तो था उनका बेटा, तो बेटे के आने पर बाप थोड़ी खड़ा होता है। लेकिन शंकर जी खड़े नहीं हुए तो दक्ष प्रजापति को बड़ा बुरा लगा, उसने भरी सभा के अंदर भगवान शंकर का अपमान किया। अरे रे सभासदों देखो एस में शिष्यताम प्राप्त है, ये मेरा शिष्य बना हुआ है, मेरी लड़की इसको मैंने दी है, मेरा जवाई है तो ये मेरा एक तरह से बच्चा ही तो है, और मैं सभा में आया हूँ ये खड़ा नहीं हुआ है, ये अपने आप को जाने क्या मानता है, स्मशानों में रहता है, प्रेतों के बीच में रहता है, इसकी बुद्धि खराब हो गई, मैं इसको भरी सभा में साफ देता हूँ कि आज के बाद इसको देवताओं के साथ में बैठ करके यज्ञ का हिस्सा लेने का अधिकार नहीं रहेगा, ऐसे करके उसने साफ दे दिया। बहुत मना किया दक्ष प्रजापति को ऐसा मत कीजिए, पर वो माने नहीं। तब जो है नंदीश्वर खड़े हो गए, उन्होंने कहा कि ये दक्ष के अनुयायी जितने भी लोग हैं हम इनको साफ देते हैं कि ये कर्मकांड में ही फंसे रहेंगे, आज उसके यहाँ यज्ञ करो, आज वहां जाओ और ये सब मांगते फिरेंगे और यज्ञ के चक्कर में ही इनका सारा जीवन खत्म हो जाएगा, ये तत्व ज्ञान से विमुख हो जाएंगे। तब भृगुजी महाराज थे वो ब्राह्मण, वो वहां उस समय में अपने मूंछों को और दाढ़ी को बना करके और उन्होंने साफ दिया कि शंकर जी को मानने वाले सब पाखंडी होंगे, त्रिपुंड लगा लगा के पाखंड फैलाएंगे। ऐसे करके एक दूसरे को साफबाजी हुई तो सब वहां से रवाना हो गए कि ये काय की सभा है भाई, लड़ाई झगड़े की सभा हुई है, तो सब चले गए। उसके बाद दक्ष प्रजापति के मन में, देखो जिसके मन में पाप रहता है ना उसके द्वारा गलती पर गलती होती है। भगवान शंकर तो चुपचाप कैलाश पर्वत पर आ गए, दक्ष प्रजापति को चैन नहीं मिला। उसने साप दिया ये गलती की और अभिमान किया वो गलती की, अब भाई अब वो चैन से कैसे रहेगा, फिर गलती पर गलती करने जा रहा है। उसने एक बहुत बड़ा बृहस्पति सव नाम का एक यज्ञ किया जिसमें संसार भर के सब ब्रह्मर्षियों को और देवर्षियों को और पितरों को और देवताओं को सबको आमंत्रित किया, केवल शंकर को आमंत्रित नहीं किया, इसलिए कि भगवान शंकर का सबके बीच में अपमान करना है, अपमान। तो सब लोग जो है विमानों में बैठ के जा रहे थे, सती जी ने पूछ लिया कि अरे भाई आप कहाँ जा रही हो? अरे सती तेरे ही तो घर जा रहे हैं। मेरे घर जा रहे हो? क्या तेरे घर में एक बहुत बड़ा उत्सव है, तुझे नहीं बुलाया क्या? अब तुझे नहीं बुलाया क्या, ये बात ऐसी बुरी लगी सती के मन में, चुभ गई है, मेरे बाप के यहाँ उत्सव और मुझे नहीं बुलाया। वो अपने प्राणनाथ भोलेनाथ भगवान शंकर के पास जाकर निवेदन किया कि महाराज आपके ससुराल में एक बहुत बड़ा यज्ञ हो रहा है, अभी मेरी बातचीत हुई, आकाश मार्ग से कई विमान जा रहे थे, उन्होंने मुझे बताया है, तो कोई बात नहीं, निमंत्रण नहीं दिया है तो भी अपने चलो, क्योंकि अपने माता पिता के घर तो बिना निमंत्रण के भी जा सकते हैं, अपने पति के घर भी बिना निमंत्रण के भी जा सकते हैं, अपने गुरुजन है उनके घर भी तो बिना निमंत्रण जा सकते हैं, आपके तो वो ससुर हैं, आपके लिए तो पिता के समान है, यदि आपको नहीं बुलाया है तो कोई बात नहीं, अपने बिना निमंत्रण के भी चलते हैं। ए सती क्या बात करती हो, बिना निमंत्रण जाएंगे वहां? तुमने जो बात कही है वो बात सहृदयों के लिए बड़ी अच्छी है, जो श्रेष्ठ पुरुष है जिनके मन में राग नहीं द्वेष नहीं, जो सरल हृदय वाले हैं, बुलाने में मान लो निकटता के अत्यंत निकटता के कारण से भूल भी जाए तो भी कोई बात नहीं, हो सकता है ऐसा, परंतु अपने को जानबूझकर न बुलाने के लिए ही ये यज्ञ किया है और वहां हम चले जाएंगे। सती शत्रु का बाण खाना हमको अच्छा लगता है, हमारे कलेजे में कोई बाण लगाए, पराक्रम दिखाए, एक शत्रु बाण लगाएगा हम कहेंगे शाबाश बहुत अच्छा, लेकिन एक हमारा संबंधी हमारे सामने यदि कटु बाणी बोलेगा, वो बाणी का दर्द कभी मिटता नहीं है, वो हमको जरा टेढ़ा सा देख भी लेंगे और ये कहने कि वाह शंकर जी आप तो बिना बुलाए भी आ सकते हो, वाह वाह ऐसा हमने आपको नहीं जाना था कि आप बिना बुलाए आ जाओगे, इतनी बात भी कह देंगे सहन नहीं होगा, क्योंकि आत्मी लोगों की हर क्रिया का असर पड़ा करता है, इसलिए भाई तुम जो है मेरे कारण से, यद्यपि तुम्हारे साथ उसका प्रेम है पर मेरे कारण से उन्होंने तुमको भी निमंत्रण नहीं दिया है, और दूसरी बात यह भी है कि उसके हृदय में हम लोगों का जो उत्कर्ष है, हम लोगों का जो ज्ञान है, हम लोगों की जो तपस्थिति है वो भी उसको अच्छी नहीं लगती है। पापच्य माने ने हृदय तुरेन्द्रिय है समृद्धि भी, हम लोगों के समृद्धियों से उसके मन में जलन होती है, इसलिए वहां पर नहीं जाना चाहिए। सती तुम ये कहोगी ना कि उस दिन आप सभा में खड़ा क्यों नहीं हुए? हम खड़ा इसलिए नहीं हुए भाई कि किसी भी व्यक्ति का जो आदर होता है वो व्यक्ति का आदर नहीं होता है सती, वो आदर होता है उस व्यक्ति में रहने वाले भगवान का, भगवान का आदर होता है, और जिसको आदर मिलता है वो इतना घमंडी है कि वो आदर को अपना आदर मान लेता है। सब हम यहाँ आए हैं, हमारे आने पर सब खड़े हो गए, अरे तेरे आने पर खड़े नहीं हुए भाई, तेरे जैसा ही शरीर इनका है, तेरे से भी अच्छा है, तेरे से खड़े नहीं हुए, तुम्हारे अंदर भगवान है, तो भगवान तुमको आदर देकर ये बताते हैं कि तुमको भी दूसरों का आदर करना चाहिए। इसलिए मैंने उस दक्ष प्रजापति के अंदर रहने वाले भगवान है, उन भगवान का तो मैंने आदर किया ही है, लेकिन दक्ष का घमंड न बढ़े इसलिए मैं बैठा रहा, इसलिए खड़ा नहीं हुआ, क्योंकि प्राज्ञेय परस्मै पुरुषाय भूयसे, परस्मै पुरुषाय चेतसा गुहाशयायैव, उसके हृदय में रहने वाले भगवान का ही आदर होता है, न देह मादिदेह। और दूसरी बात यह भी है कि शुद्ध अंतःकरण का नाम वसुदेव है और उसमें जो विराजमान परमात्म तत्व का अंश है उसका नाम वासुदेव है। भगवान का नाम वासुदेव क्यों पड़ता है कि वो अंतःकरण में रहते हैं, अंतःकरण का नाम वसुदेव है और उस वसुदेव को मैं नमस्कार करता ही हूं, वासुदेव को नमस्कार करता ही हूं, इसलिए वो तो अपना आदर समझ के मेरे से द्वेष करने लगा तो इसी कारण से मुझे नहीं बुलाया। अब यदि मेरी बात का उल्लंघन करके जाओगी तो हे सती तुम वापस लौट करके नहीं आ पाओगी। यदा सद्यो मरणाय कल्पते, और यदि वहां गई और स्वजनों ने यदि जरा सा भी मान भंग कर दिया, अपमान कर दिया, तो वो तो मरने के समान हो गया। ऐसे जीने से लाभ भी क्या है, बढ़िया अच्छा अपने यही रहो। भगवान शंकर की बात सती के गले नहीं उतरी। देखो अब ये ना ये धर्माध्याय है, ये धर्म धर्म की बात है। यहां सती जी को ये बात अच्छी नहीं लगी। देखो यहां धर्म अध्याय में व्यतिरेक बुद्धि से कौन चल रहे हैं, दो जने चल रहे हैं, एक तो दक्ष प्रजापति, एक हमारी सती जी। सती जी के अंदर तो पिता के प्रति मोह है और दक्ष प्रजापति के अंदर भगवान शंकर के प्रति द्वेष है। तो जहां मोह और द्वेष होता है वो भाई धर्म के विपरीत मार्ग चलता है, और इस धर्माध्याय में भगवान शंकर है वो है धर्म के स्थापक, इनकी कहीं गलती नहीं आ रही। अब जो है सती के मन में था मोह कि मेरी माँ से मिलूंगी, मैं मेरे पिता से मिलूंगी, पिता से भी इतना नहीं था, माँ से और अपनी बहनों से मिलूंगी, बहनोइयों से मिलूंगी, ऐसे मन में उसके थी। वो भगवान शंकर ने मना कर दिया तो वो बहुत नाराज हो गई। नाराज होकर के वो अपनी इच्छा से चल पड़ी। हो पति आज्ञा एक धर्म होता है, पर वो मोह में थी, चली गई। भगवान शंकर ने साथ में कुछ गण भेज दिए, ठीक है जाओ भाई तुम लोग साथ में जाओ। और जब वहां सती जी पहुंची अपने पिताजी के वहां यज्ञ स्थली पर, अरुद्र भागम, भगवान शंकर का वहां पर कोई भाग नहीं देखा यज्ञ में, सब देवताओं का भाग देखा, तो उसके मन में बहुत बुरा लगा। भरी सभा के अंदर वो अपने पिता को बोलने लगी कि हे पिताजी ध्यान से सुनिए, मेरे पति के समान संसार में उनकी बराबरी का भी कोई नहीं है, उनसे श्रेष्ठ होने का प्रश्न ही नहीं होता, ऐसे मेरे पति के साथ तुम बैर रखते हो, ये तुम्हारे लक्षण है, अच्छे पुरुषों के लक्षण है। अरे श्रेष्ठ पुरुष तो वे होते हैं पिताजी जो दूसरों के दोष में भी गुण देखते हैं, और निकृष्ट पुरुष तुम्हारे जैसे वो होते हैं जो महात्माओं के गुणों में भी दोष देखा करते हैं। क्या करें यार, जो देहाध्यासी होते हैं वो दूसरे के निंदक होते हैं और महात्माओं के तो विशेष निंदक होते हैं। महन विनिंदा कुणपात्मवादीशु, कुणपात्मवादी, कुणपात्मवादी माने देहाध्यासी पुरुष, देह में जिनका ज्यादा अध्यास है वो महापुरुषों की निंदा करते हैं। आपको शर्म नहीं आती पिताजी, एक बार जीवन में प्यार से कोई शिव शिव ऐसा बोल देता है उससे उसका कल्याण होता है, उन्हीं शिव के साथ आप द्वेष रखते हैं। शास्त्र में आता है कि ऐसी बात हो तो जहां महापुरुषों की निंदा हो वहां कान बंद करके चला जाए, और अपनी ताकत हो तो उसकी जीभ मुंह से पकड़ करके खींच ली जाए। आप मेरे पिता हो इसलिए आपकी जीभ तो मैं नहीं खींच सकती, परंतु मैं आपकी सभा के अंदर रहने लायक भी नहीं हूं। आपके मन में ये आता होगा कि शंकर जी वेद मार्ग का अतिक्रमण किए हुए हैं, ये वेद की शिक्षा किन पर लागू होती है, जो कल्याण के मार्ग पर चलने वाले हैं उन पर लागू होती है, भगवान शंकर तो अपना ये मार्ग कब का ही पार कर चुके हैं। इसलिए कर्म प्रवृत्तं च निवृत्तमप्यरितं वेदे विविच्योभयलिंगमाश्रितं विरोध यद्योग पदैक कर्तरी, माने प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों प्रकार के विधान एक कालावत छेदेन एक व्यक्ति पर हो नहीं सकता है, क्योंकि भगवान शंकर अब निवृत्ति में चले गए, उनके ऊपर कोई वैदिक प्रवृत्ति लागू नहीं होती। फिर भी आप यदि इतना मेरे से नाराज है और हमारे पति से नाराज है, तो मैं भी अब आपसे दाक्षायणी कहलाना नहीं चाहती है, दक्ष की बेटी है। सती कौन है? दक्ष की बेटी है। जो ही मेरा नाम लिया जाएगा तो आपका नाम जोड़ेंगे, मैं आपका नाम ही सुनना नहीं चाहती, मैं अपने शरीर को यही समाप्त करती हूँ। व्यस्त्रिक्ष एतत् कुणपम त्वदंगजम, आपके शरीर से पैदा हुआ ये जो कुणप है, ये शरीर है, इसको व्यस्त्रिक्ष मैं इसको छोड़ करके और यासी जाती हूँ। ऐसा कहकर के पीला कपड़ा पहन करके वो वहां पर विराजमान हो गई। देखो कोई घास लेप नहीं लगाया, कोई घी नहीं लगाया, कोई और ज्वलनशील पदार्थ नहीं लगाए, कोई लकड़ी की चिता नहीं बनाई। लोग कहते हैं कि आपके शास्त्रों में जो ये स्त्रियां यूं ही जल जाती है, यूं ही गल जाती है। अरे अब देखो क्या क्या बताए, कैसे कैसी बात है कि सती की महिमा कहोगे तो हम तुमको जेल खाना भेज देंगे। अरे पहले समझो तो सही कि हमारे यहाँ सती का क्या, तुम्हारे विधान में कितनी घासलेट लगा लगा के लड़कियां मरती है, उनका क्या करते हो भाई? उनकी तरफ विचार करो, वो क्यों मरती है, उनके दुख को दूर करो। और हमारे जो सती होते हैं उन सतियों का स्वरूप समझिए, क्या होता है उनका स्वरूप। हमारे सती सभा में बैठ गई, कोई लकड़ी नहीं, कोई चिता नहीं, कोई घासलेट नहीं, कोई तेल नहीं, कोई कुछ नहीं, उसकी एक साधना देखिए आप। वो कपीला कपड़ा पहन करके, जल का स्पर्श करके, आंख बंद करके, और अपने समान और अपान दो वायु है, उन दोनों वायु को बराबर करके नाभि चक्र से उन्होंने वायु के साथ अग्नि की कल्पना करके श्वास को ऊंचा उठाया। अग्नि सहित वायु को इस प्रकार से प्राणायाम से ऊपर उठाया कि उनका शरीर था वो कंठ तक गया, वो भ्रुवो तक गया, कंठात भ्रुवोर मध्यम अनंदितान। तो उस अनंदिता सती जी ने वहां तक उस प्राणवायु को लिया अग्नि सहित, और फिर वो जो है शरीर धू धू करके जलने लगा। देखो जलने लगा, पर अग्नि के अंदर एक दाहकता होती है, एक तीक्ष्णता होती है, सती के लिए वो तीक्ष्णता नहीं हुई। वो अग्नि ने शरीर को जलाया पर उसकी उत्पीड़ना नहीं हुई, उत्पीड़ना नहीं हुई उनके, योग की विद्या थी। और दूसरी बात है कि ऐसी पवित्र अग्नि थी वो कि उसमें ये ज्वलन होने की बात ही नहीं थी। सबके सामने जब ये शरीर उनका भस्म हुआ तो भाई फिर जो है सब लोग देखते ही रह गए, हा हू वो करने लग गए, सब दक्ष को धिक्कारने लगे। तो फिर भगवान शंकर ने जो सती जी के साथ में पुरुष भेजे थे, वो पुरुष वहां पर लड़ाई झगड़ा करने लगे, उनको मारपीट करने लगे। तब जो है वहां रिभु नाम के और देवता लोग प्रकट होकर शंकर जी के गणों को भगा दिया, और वो बिचारे कैलाश पर्वत के लिए रवाना हो गए। इधर नारद जी महाराज नारायण नारायण करते करते कैलाश पर्वत पर आए और कहने लगे, महाराज आज आप अकेले ही कैसे विराजमान हो? नारद जी को तो सब पता था। कहने लगे कि देखो हमारी पत्नी हमारे मना करने पर भी दक्ष प्रजापति के यहाँ गई, आपने उसको कह दिया था कि नहीं वहां जाएगी तुम मर भी सकती हो? बिल्कुल कह दिया था, आपकी वाणी झूठी कैसे हो सकती? क्या हुआ महाराज, क्या क्या हुआ? आपने कह दिया आपकी वाणी, आप तो जो है त्रिकाल में सत्य बोलने वाले, ऐसा ही हो गया महाराज। सती गई और वहां उसने आपका जब अपमान देखा तो वो वहीं पर भस्म हो गई। भगवान शंकर ने कहा, अरे इससे तो अधर्म बढ़ेगा, सती जैसी सती स्त्री सती हो गई तो ये दक्ष तो है फिर अभिमान, ये जो है अधर्म बढ़ाएगा, इस अधर्म का नाश तो करना ही चाहिए। भगवान शंकर ने क्रोध किया। देखो ये क्रोध कैसा था, ये दिव्य क्रोध था, दिव्य क्रोध। क्रोध क्रोध का भी रूप होता है, अधर्म के नाश के लिए क्रोध था। अपनी जटा में से एक बाल निकाला और उसको जमीन पर पटका और वो रुद्र होकर के उनके सामने आया, महाराज क्या आज्ञा है? जाओ दक्ष यज्ञ को समाप्त कर दो। अपने हाथ में वो त्रिशूल ले लिया और त्रिशूल लेकर के वो वहां से रवाना हुआ, सेना लेकर के। वहां वो उसका नाम था वीरभद्र, वो वीरभद्र वो भी रुद्र की संज्ञा में ही आता है। त्रिशूल लेकर के गया और वहां वैसा उत्पात मचाया उसने, सब देखते ही रह गए, अरे इतनी आंधी कैसे आई, इतने आदमी कहां से आए। वहां जाकर के उसने जो उत्पात मचाया है वहां पूषा ने चंडीश ने तो पूषा को पकड़ लिया और वीरभद्र ने दक्ष प्रजापति को पकड़ लिया। विभु के बाल पकड़ पकड़ रोसने लग गए, पूषा के दांत तोड़ दिया, उसका मुंह एकदम जो है दांतों से रहित हो गया। दक्ष प्रजापति को लेकर उसका सिर काट दिया संज्ञपन विधि से। कहते संज्ञपन विधि क्या होती है कि जिस विधि से यज्ञ के अंदर पशु का गला काटा जाता है उस विधि से उनको काट दिया। और फिर उसके बाद उसके सिर को काट करके अग्नि में डाल दिया और सब लोग वापिस आ गए। भगवान शंकर ने पूछा क्या हुआ, पूछा कुछ नहीं, वो जो हो गया सो हो गया, कुछ नहीं पूछा। देवता लोग गए ब्रह्मा जी के पास, महाराज हमको तुम्हारा पीटा भगवान शंकर के वीरभद्र के लोगों ने, क्या हुआ? हुआ तो क्या, भगवान शंकर को नहीं बुलाया था, हम लोग चले गए थे वहां तो हमारी ये दशा होगी, तुमको जाना ही नहीं चाहिए था। जिस यज्ञ में मैं नहीं हूं, भगवान विष्णु नहीं है, जिस यज्ञ में शंकर जी नहीं है, उस यज्ञ में तुम क्यों गए? तुम्हारा ये तो गलती हो गई, अब तो सुधारिए, अब तो यज्ञ करने ही लोग बंद कर देंगे। तब कहा ये बात ठीक है। तो किसी का पैर टूटा हुआ, किसी का हाथ टूटा हुआ, किसी की कमर टूटी हुई, सब टेढ़े मेढ़े हुए हुए देवता लोगों को लेकर ब्रह्मा जी पहुंचे भगवान शंकर के पास। अब जो भगवान शंकर का स्वरूप देखिए हो, घरवाली मर गई, देवताओं में अपमान हुआ हुआ, पर भगवान शंकर कैसे बैठे हो? भगवान शंकर एक वृक्ष के नीचे बैठे हैं तर्क मुद्रा में और नारद जी को तुरीय ब्रह्म का उपदेश दे रहे हैं, उनको ब्रह्म ज्ञान का उपदेश दे रहे हैं, ब्रह्म सनातनम, सनातन ब्रह्म का उपदेश दे रहे हैं। इतने में ही ब्रह्मा जी देवताओं के साथ वहां पहुंचे। आइए आइए ब्रह्मा जी आइए, बहुत प्यार से भगवान शंकर ने खड़े होकर ब्रह्मा जी का स्वागत किया। ब्रह्मा जी ने कहा हे शंकर जी, संसार के तो आप स्वामी हो, आपके कर्म बड़े मंगल हैं, बड़े दिव्य हैं। जो इस संसार में पाप करने वाले लोग हैं वो अपने पाप से अपने आप ही अपना पतन कर चुके होते हैं, इसलिए आप पापियों को किसी प्रकार से दंड देना उचित नहीं मानते हैं। आप जैसे लोग पापियों का यदि वध कर देंगे तो फिर उन्होंने जो पाप किया है उस पाप से उनका मरना कैसे हुआ? वो तो आपके मारने से मरना हुआ। महाराज आपने दक्ष प्रजापति का जो यज्ञ था उस यज्ञ को समाप्त किया, उसको वापिस आप चालू कर दीजिए, हम सब देवता लोग मिलकर के यज्ञ में आपका हिस्सा सुरक्षित कर रहे हैं, आपकी बड़ी कृपा होगी। भवतानुग्रहितानाम आशुमन्ये अस्त्वनातुरम, आपकी कृपा होने पर सब ठीक हो जाएगा और आप वहां पर पधारिए और पधार करके उस यज्ञ को पवित्र कीजिए। भगवान शंकर क्या बोलते हैं, अच्छा ओहो हाँ हाँ, दक्ष प्रजापति ने हमारा अपमान किया था, हाँ वहां हमारी पत्नी गई थी, ओ हाँ उसने वहां अपने शरीर का त्याग किया हो, मुझे तो देखो ब्रह्मा जी इस बात की कोई याद ही नहीं रही, मुझे याद ही नहीं रहा। नागम प्रजेश बालाना वर्णये नानु चिंतये, बच्चे लोगों की गलतियों का हम कहां ध्यान करने लगते हैं ब्रह्मा जी, ये सब बिचारे भगवान की माया से मोहित हुए हुए हैं, इनको कुछ पता नहीं है। चलो दक्ष प्रजापति का यदि सिर काट दिया तो उसके बकरे का सिर हो जाए, और पूषा के दांत नहीं है तो वो राबड़ी है, खिचड़ी है और हलवा है, कड्डी है, ऐसी चीज वो खाने लग जाए, और हमारे भृगु जी के बाल नहीं है तो उनके भी बस्तस पशु भृगुर भवेत, बकरे जैसे यहां इतने ठोड़ी ठोड़ी तक बाल आ जाए, बस जा हो जाएगा। नहीं महाराज, आप स्वयं वहां पर चलिएगी, चलिए हम चल लेते। भगवान शंकर को उस समय तो जाने में संकोच हुआ, सती ने कहा तब तो गए नहीं, अरे दक्ष प्रजापति ने नहीं कहा तो क्या हुआ? बेटी ने तो कहा कि बेटी तो है लेकिन पत्नी हमारी रह गई ना, ज्यादा हक बाप का नहीं रहा, पति का रहा। अब जो है भगवान ब्रह्मा ने कहा कि आप चलिए तो हाँ चलिए। देखो भगवान शंकर यज्ञ को सुधारने के लिए स्वयं चले हो, कि यज्ञ सुधर जाए। भगवान शंकर वहां गए और उन्होंने दक्ष प्रजापति का सिर लगाया। सिर लगाते ही दक्ष प्रजापति एकदम होश में आ गए। अब दक्ष प्रजापति भगवान शंकर के चरणों में गिर करके और कहने लगे कि महाराज बड़ी आपने कृपा की, बड़ी कृपा की, आपने मुझे दंड दिया, बड़ा अच्छा किया। मैं प्रजापति के घमंड में बहुत फूल गया था। जिस प्रकार से कुमार के ऊपर चलने वाले पशु को दंड दिया जाता है, ऐसे आपने हमको दंड दिया, अच्छा किया। दृष्टार्द्रया से भगवान स्वकृते न तुष्ये, मेरी गलती तो हो गई महाराज, अब आप अपने क्षमाशील स्वभाव से ही क्षमा कर देना, मेरे गुण अवगुण की तरफ मत देखना महाराज। भगवान कहते हैं उस समय भगवान शंकर, मैत्री जी बोलते हैं, भगवान शंकर ने बहुत प्यार से उनका आदर किया। हो दक्ष प्रजापति बोल तो होती है, ध्यान देना, हो ध्यान देना, विचित्र बात है, कब भूल तो हो ही जाती है, कोई बात नहीं, मैं तो अपने मन में भूल भी नहीं मानता हूं। जो ही भगवान शंकर के चरणों में दक्ष प्रजापति गिरे और अपनी क्षमा याचना की और अपने मन से राग द्वेष मिटाया, त्यों ही भगवान विष्णु आठ भुजा से प्रसन्न होकर वहां पर प्रकट हो गए। भगवान को ये यज्ञ अच्छा लगता है, जो राग और द्वेष जिसमें नहीं होता ना, वो क्रिया अच्छी लगती है। पहले वाले यज्ञ में भगवान नहीं आए, विष्णु भगवान, क्योंकि द्वेष भरा हुआ था। यज्ञ तो है, देखो कई कई बाहर की क्रिया तो बड़ी अच्छी होती है, लेकिन भीतर में भाव खराब होने पर वो क्रिया भी अच्छी नहीं होती, क्रिया अच्छी नहीं होती। जैसे कोई चोर आदमी है, कहीं चोरी करके आया और वो गांधी मैदान के पास आके देखा कि यहाँ इधर उधर तो कोई नहीं, यहां जाके बैठ जाओ साहब, वहां बैठ गया, ये क्या करते हो? सत्संग करते हैं साहब, सत्संग करते हैं हम। अरे तो सत्संग की क्रिया ऊपर से तो सत्संग करते हैं, लेकिन भाई तू पीछे से चोरी करके आया है ना, वो चोरी करने वाला वो सत्संग कर रहा है, आप लोग चोरी, आप लोग बैठे हो सत्संग करते हो, आप लोग कोई कुछ नहीं कहेगा, सब आदर करेंगे आपका, कह रहे भाई माताएं बहने भाई लोग कथा सुन के आ रहे हैं, और उसके लिए आया कि सब ये चोरी करके बैठा है, केवल ऊपर से दिखाता है सत्संग कर रहे हैं। ऐसे ही दक्ष प्रजापति ने यज्ञ तो बड़ा अच्छा किया, पर भाव खराब होने से वो क्रिया अच्छी नहीं, भगवान को पसंद नहीं आई। और यहां भगवान बिना बुलाए आगे, बिना बुलाए भगवान विष्णु को बुलाया नहीं, भगवान वहां आए तो सबने भगवान का स्वागत किया। दक्ष प्रजापति ने रोने सबने स्वागत किया। स्वागत करने पर अंत में भाई भगवान ने स्वयं ने कहा, अरे सुनो सुनो दक्ष जी सुनो, मैं ब्रह्मा और विष्णु, मैं ब्रह्मा और शिव कोई अलग अलग नहीं है, हम सब एक ही है। हम ही संसार की रक्षा करने वाले और बनाने वाले और इसका हरण करने वाले तीन शक्तियां ही अलग अलग नाम में, हमारे में तुम भेद करते हो, शंकर जी का अपमान करते हो, क्या हमारा अपमान नहीं है? कोई आदमी अपने हाथ में डंडा लेकर अपने बाएं हाथ को मारता है कि हम क्या करते हैं, हम आपको थोड़ी मारते हैं, आपके बाएं हाथ को मारते हैं, आपको नहीं मारते। अरे वो आपको नहीं मारते, क्या हमको ही मारते, वो चोट तो हमको ही लगती है ना। ऐसे ही ब्रह्मा विष्णु महेश में किसी का भी अपमान करते हो, हमारा सबका ही अपमान होता है। तुमने राग द्वेष से जो ये क्रिया की है, इससे हम सबको बुरा लगा है, और जब तुमने द्वेष का त्याग कर दिया तो ये हमको बहुत अच्छा लगा। फिर जो है वो सती उधर हिमालय में वहां जाकर पैदा हुई, और फिर उसका भगवान शंकर के साथ ही विवाह हुआ। ये हमने भगवान शंकर का बड़ा विचित्र चरित्र सुनाया है। मैत्री जी महाराज कहते हैं कि भाई जैसे धर्म की सृष्टि है, ऐसे अधर्म की भी सृष्टि है, उसको प्रतिसर्ग बोलते हैं। प्रतिसर्ग, प्रतिसर्ग माने सर्ग से उल्टी। जैसे अधर्म की स्त्री का नाम है मृषा, मृषा माने झूठ बोलना, और उसके संतान को जो ही दंभ और माया, दंभ और माया को जो है निर्ति ले गया, उससे लोभ और निकृति पैदा हुई, अधर्म की सृष्टि है, अधर्म की सृष्टि। फिर क्रोध और दुरुक्ति, जो आदमी क्रोध करेगा वो गाली जरूर निकालेगा, अनसंट बोलेगा, जा तेरा बाप मर जाएगा, तेरी मां मरेगी, ऐसे करके बोलेगा, वो क्रोध में पता थोड़ी चलता है। अपने भाई को बोलता है तेरी मां मरेगी, अरे तेरी मां मरेगी तो वो तेरी नहीं है क्या? है वही, पर दुरुक्ति, दुरुक्ति और क्रोध दोनों का सामंजस्य है। फिर उससे क्या होता है कि कली होती है और अब लड़ाई झगड़ा होता है और मौत को प्राप्त होता है। ऐसे ऐसे प्रतिसर्ग की बात है। अब कहते हैं कि प्रियव्रत और उत्तानपाद हुए, तो उसमें जो ये उत्तानपाद थे इनके दो पत्नियां थी, सुरुचि और सुनीति। तो सुनीति के ध्रुव थे, वो एक बार अपने बाप की गोद में बैठने लगे तो माँ ने मना कर दी, सौतेली माँ ने मना किया, अरे ऐसा मत करो, पहले जाकर भगवान का भजन करो और फिर मेरे गर्भ में जन्म ले आओ और फिर अपने बाप की गोद में बैठो। ध्रुव जी ने देखा कि अरे राम राम राम, भगवान के भजन का इतना घोर अपमान कि पहले मैं भजन करूं फिर मैं इसके पेट में आऊं, क्या भगवान के भजन का फल ये होता है? और फिर उसके बाद मैं पिता की गोद में बैठूं, क्या तब तक ये रहेगी या पिता रहेंगे, कोई रहेगा तब तक? भगवान के भजन का इतना अपमान, तो इस अपमान को मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। अब तो भगवान का भजन करना है और पिता के गोद से भी ऊंचा पद जाना है। माँ के पास गए, माँ ने कहा कि बेटा भगवान का भजन करो। देखो भजन की बात चाहे कोई कहो, चाहे राग से कहो, चाहे द्वेष से कहो, चाहे कैसे ही कहो, उसको मान लेना चाहिए। ठीक है माँ, निकल गए। अब देखो भगवान का भजन करने वाले लोग होते हैं ना, उनके देखो ध्रुव जी के मन में काम क्या था। ये काम का अध्याय है, पांच अध्याय काम के हैं। काम माने इच्छा। थोड़ा घड़ी को देखना बंद कर देना, विशेष बात बता देते हैं कि काम का अर्थ होता है इच्छा। उनकी खास इच्छा क्या थी कि मैं ऊंचा बैठूं, ऊंचा बाप की गोद में बैठूं, ये इच्छा थी। पर उस इच्छा को मां ने भगवान, सौतेली मां ने भगवान के साथ संबंध कर दिया। अब देखो उनका ये काम निखर रहा है। और फिर जन्म देने वाली मां ने कहा नहीं भाई, चाहे सौतेली मां बोलो चाहे कोई बोलो, भगवान के भजन की बात बिल्कुल सत्य कही है, तो साथ दे दिया। भगवान के साथ संबंध होते ही सबका सहयोग मिल गया। अब वो घर बार छोड़ करके जंगल में गए तो नारद बाबा मिल गए। नारद बाबा ने कहा कि अरे क्या बात है भाई, कि मैं भगवान का भजन कर, काएगा भगवान का भजन करेगा, चल मेरे साथ बाप की गोद में तो बैठा ही दू तेरे को। कहना ही महाराज, अरे भाई देख हम बुढ़े हो गए, हमारी दाढ़ी देख सफेद हो गई, और अभी तक हम खड़ताल की तंदूरा बजाते वीणा बजाते, हमको भगवान नहीं मिले, तेरे काम मिलेगी, आपको नहीं मिला तो मैं तो भगवान का भजन ही करूंगा और त्रिभुवन का उत्कृष्ट पद प्राप्त करूंगा मैं। पदम त्रिभुवनोत्कृष्टम जिगीशो साधु वर्तम में, वो मार्ग दिखाओ तो दिखाओ, मैं पीछे तो लौटने वाला नहीं हूं। लपक करके नारद जी ने गोद में रखा, वाह बेटा वाह, तेरे से यही बात सुनना चाहता था, मैंने तुमको देखा कि तुम भगवान के भजन में ज्यादा रुचि वाले हो कि उसी बाप की गोद की बैठने में, तुम्हारे माँ के वचन कैसे लगे, तुम्हारे सौतेली माँ के वचन कैसे लगे, अब तुम्हारे मन में भजन की मात्रा बढ़ गई और पिता की गोद में बैठने की इच्छा ने बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा, चलो हम तुमको बताते हैं, मधुवन में चले जाओ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ऐसा करके नारद जी ने उनको कहा कि ये द्वादशाक्षर मंत्र का तुम जाप करो, भगवान के स्वरूप का ध्यान करो, भगवान की लीलाओं में कभी भी किसी भी अवतार की लीला में तुम अपने को साथ मान लो, आह इस लीला में मैं साथ में हूं, ये लीला तो मेरे सामने ही हो रही है, ऐसे उनके साथ में रहो। और भाई भगवान की पूजा मन से करते रहो, बस तुम्हारी साधना पूरी हो जाएगी। अब देखो इनको नारद जी भी साथ में मिल गए, और नारद जी ने देखा कि कहीं राजा इसकी भक्ति में बाधा न डाल दे, तो नारद जी गए राजा के पास। कहने लगे कि महाराज आपका बेटा, कि महाराज बेटा तो क्या बताऊं, एक स्त्री में मोह करके मैंने बेटे को घर से निकलवा दिया, अब वो मेरा बेटा कहां मिलेगा, कि चिंता मत करो, अब तुम्हारा बेटा मेरी जिम्मेदारी है, उसके भजन में बाधा मत डालना। नारद जी ने पहले वहां रोक लगा दी। देखो जब भजन की इच्छा होती है सारी अनुकूलता बैठ जाती है, सब अनुकूलता, प्रतिकूलता भी अनुकूलता में हो गई। अब सौतेली माँ के वचन है, सौतेली माँ अनुकूल चलती है क्या? लेकिन अनुकूल हो गई वो, भगवान की इच्छा होने पर सब ठीक बैठ जाता है। अब नारद जी ने भाई ऐसा कठोर तप किया कि पहले महीने में हर तीसरे दिन बोर वगैरह खा लेते थे, फिर दूसरे महीने में हर छठे दिन वो सूखे पत्ते खाते थे, तीसरे महीने में हर नवे दिन जल पीते थे, चौथे महीने में बारहवें दिन सांस लेते थे, पांचवें महीने में आते ही श्वास को जीत लिया, एक पग पर खड़े हो गए, पांचवा महीना व्यतीत हुआ, छठा महीना चालू हुआ, देवताओं में सब में खलबली हो गई, त्रयो लोकाश्चकम पिरे, सब घबराए। तो देवता लोग गए भगवान के पास कि महाराज बड़ी घबराहट हो रही है, बड़ी अमूझनी आ रही है, बात क्या है? कि अमूझनी आ रही है तो भाई ध्रुव के तपस्या हो रही है, आप जाइए महाराज, अभी जाता हूँ। मैत्रेय जी कहते हैं कि विदुर वो भृत्य दिदृक्षया गत है, भृत्य दिदृक्षया, सेवक के दर्शन करने के लिए भगवान वहां से रवाना हो गए। वहां गए और ध्रुव जी के सामने खड़े हो गए। ध्रुव जी अपने मन की मूर्ति से उनका दर्शन कर रहे थे, सामने खड़ी मूर्ति के कोई ज्ञान भी नहीं, उनको मन के अंदर जो मूर्ति बसाए उसका ध्यान कर रहे, उसका फल है ये, भगवान को आना पड़ा हो, ये मानसिक मूर्ति का, मानसिक ध्यान का, मानसिक साधना का बहुत बड़ा बल होता है। लोग देखते पहले भगवान हमको दिखे फिर हम साधना करें, ऐसे भगवान ठगाई में आने वाले नहीं है। पहले दर्शन दे दे और फिर कोई साधना में त्रुटि हो जाएगी तो हमारे मुश्किल हो जाएगी। भगवान कहते हैं तुम अपनी मर्जी से मुझे जैसा मान लो वैसा मैं आ जाऊंगा, यदि मैं पहले दर्शन दे दूं और फिर तुम भजन ही नहीं करो तो, अच्छा पहले दर्शन दे दूं और फिर तुम ध्यान करने में कहीं गलती कर लो तो, इसलिए मेरे ऊपर तुम ये बात मत डालो, तुम तुम्हारे भजन में लगे रहो। अरे ध्रुव जी महाराज मस्ती से यूं बैठे थे, भगवान ने अपने उनके हृदय में जो अपना स्वरूप था वो हटाया, ध्रुव जी महाराज चौगेरे सामने भगवान को देखा, दंडवत प्रणाम किया और भगवान ने अपना शंख था वो शंख लेके छू दिया, इस ध्रुव जी का शरीर हृष्ट पुष्ट हो गया। अब ध्रुव जी महाराज ने भगवान की बड़ी स्तुति की कि महाराज हमारे इंद्रियों में चेतना देने वाले आप ही तो हो। लोग कहते हैं भगवान कहाँ मिलते हैं, कहाँ मिलते हैं, अरे भगवान तो तुम्हारे अंदर पड़े हैं, इन इंद्रियों को चेतना देने वाला कौन है, आंखों के अंदर देखने की शक्ति कहाँ से आई, बुद्धि में सोचने की शक्ति कहाँ से आई, और प्राणों के अंदर जिलाने की शक्ति कैसे आई, वो भगवान ही तो दिए हुए हैं, अपने पास बैठे हुए आप सारे संसार को बनाए महाराज। निर्गुण और सगुण में प्रेम हो जाना चाहिए महाराज, प्रेम सबसे बड़ी चीज है। आप नित्य मुक्त बुद्ध शुद्ध है, दृष्टा स्थितावधिमको व्यतिरिक्त आस्ते, सबके दृष्टा है इसलिए सबसे अलग है महाराज। मैं आपसे क्या मांगू, एक गाय होती गाय, वो भी बछड़े को बिना मांगे उसको दूध पिलाती है, तो महाराज आप तो हमारे पर बहुत कृपा करने वाले हो, जो उचित हो वैसा कर दीजिए। भगवान ने कहा देखो मैं जानता हूँ तुम 36,000 वर्ष तक यहाँ रहो और उसके बाद मेरा जो परम पद है वहां पर तुम उस पद के ऊपर जहाँ सब ये चक्र लगाते हैं विष्णु पद है वहां पर तुम्हारा निवास रहेगा। भगवान तो अदृश्य हो गए। ध्रुव जी महाराज को बड़ा दुख हुआ कि अरे क्या मैंने मांगा, मैं सोचा भगवान को ही मांगना चाहिए था, मुझे भगवान को ही मांगना, क्या मांग लिया मैंने। लेकिन अब क्या हो, अब ध्रुव जी महाराज अपने नगर में आए, खूब उनका स्वागत सत्कार हुआ, सुनीति के मन से अपने बेटे के प्रति, माने सुरुचि के मन में अपने बेटे के प्रति जो थोड़ी दुर्भावना थी वो खत्म हो गई। अरे मेरा बेटा मेरे कहने से भगवान का भजन करने गया, जिस पर एक भगवान प्रसन्न हो जाते हैं सारी दुनिया उसके अनुकूल हो जाती है, और भगवान भगवान प्रसन्न नहीं होते तो भाई कुछ नहीं है। इसलिए संतों ने कहा और सभी जग रूठन दे मेरो रामन रूठो चाहिए हो, सारा संसार नाराज हो तो भली हो जाए, मेरे भगवान नाराज नहीं होने चाहिए। बड़े स्वागत के साथ ध्रुव जी महाराज आए, फिर ध्रुव जी महाराज को राजा बना दिया, और उसके बाद राजा इनके पिता थे वो पिता तपस्या करने चले गए, उत्तानपाद तपस्या करने चले गए। फिर एक बार शिकार खेलने के लिए गए थे इनके भाई उत्तम, वहां यक्षों ने उसको मार दिया, फिर ध्रुव जी महाराज ने आक्रमण किया, आक्रमण किया तो सब यक्षों को मारने लगे। ध्रुव जी महाराज के पास नारायणास्त्र था, तब मनु वहां प्रकट हो गए, बस ऐसा मत करो, एक के अपराध से सबको मारते हो, मारने से क्या होगा, तुम्हारा भाई तो जीवित होने से रहा। अरे तुमने भगवान की आराधना की है तो अपने बर्ताव के अंदर बताना चाहिए दुनिया को कि भगवान के मानने वाले और न मानने में ये भेद होता है। सेठ जी कहा करते थे कि आप लोग साधन करते हो, आप अपने बर्ताव को नहीं बदलते हो तो इससे दुनिया को धक्का लगता है, ये बात कही उन्होंने। क्यों, किसी ने कह दिया कि सेठ जी ज्ञान तो भीतर होता है, बर्ताव शायद ऐसा ही हो कि नहीं नहीं ऐसा प्रमाद मत करना। जैसे कोई आदमी खेत तो जो है बो दिया, खेत बो दिया और चारों तरफ बाड़ नहीं लगाई, वो खेत कितने दिन तक सुरक्षित रहेगा भाई? वो गाय है, बैल है, भैंस है और दूसरे जानवर है, वो आकर के खा जाएंगे, बकरा है, बकरियां हैं, भेड़ है, खेत का नाश कर देंगे, उसके लिए बाड़ लगाना जरूरी है। ऐसे ही जो हम भीतर में समझते हैं उसको व्यवहार में लाना चाहिए, उसके बिना समझ का जो है आदर नहीं होगा, प्रमाद ही ज्यादा जीवन में बढ़ेगा। जानते तो है अब चाहे कुछ भी करो, ऐसा नहीं होता है, जानकारी और क्रिया दोनों में सामंजस्य हो। सेठ जी ने उदाहरण दिया कि गाड़ी चलती है, प्रकाश आगे चल रहा है और आप गाड़ी को दाएं बाएं ले जाओगे तो गाड़ी खड्डे में ही जाएगी, प्रकाश के पीछे चलो, प्रकाश के पीछे। ऐसे व्यवहार सुधारो, व्यवहार नहीं सुधारोगे तो ज्ञान कोई काम का नहीं है। मनु महाराज कहते हैं कि तुमने इतनी बड़ी तपस्या की है भाई, भगवान को प्रसन्न किया है, इसलिए तुमको ये युद्ध बिल्कुल शोभा नहीं देता, छोड़ दो इसको। तब उन्होंने ब्रह्मा जी के मनु जी के कहने से उन्होंने युद्ध करना छोड़ दिया और फिर कुबेर जी आए, कुबेर जी ने उनको वरदान दिया और ध्रुव जी महाराज अपने स्थान पर आ गए। समय आने पर ध्रुव जी ने अपने पुत्रों को राज्य दे दिया और स्वयं बद्रीनारायण चले गए। वहां वो बड़े प्रेम से भगवान की भक्ति में डूबे हुए थे और फिर भगवान के यहां से उनके पास विमान आया, सुनंद नंद दोनों पार्षद उनके साथ आए और फिर वे मृत्यु के सिर के ऊपर पैर रख करके विमान में बैठ करके रवाना हुए। माँ की याद आई, अरे मेरी माँ कहाँ है? कहा कि देखो जिस माँ का बेटा भगवान की भक्ति में लगा करता है उसका विमान तो आगे रहता है आगे, तब जो है ये आगे आगे रहे, आगे माता का विमान था और जिस लोक से ब्रह्म ये भगवान के भक्त ध्रुव जी गए सब लोकों में उनका आदर हुआ और अंत में विष्णु पद में जाकर उन्होंने स्थान प्राप्त किया। ऐसे ध्रुव जी महाराज की नारद जी ने प्रचेताओं के यहाँ पर बहुत महिमा गाई। तो मैंने आपको ये ध्रुव उपाख्यान सुनाया है विदुर, इसके सुनने से बहुत लाभ होता है, धन धान्य यश निरोगता और भवेत भक्तिर भगवती। खास बात है भगवान की इसमें भक्ति बढ़ती है और भगवान विष्णु की शरणागति विशेषता से उसके मन में पैदा होती है। विदुर जी ने पूछा कि महाराज ये नारद जी ने प्रचेताओं की सभा में कहा, ये प्रचेतागण कौन थे, जरा इनका परिचय करवाओ। तो अब वे विदुर जी महाराज के प्रश्न पर मैत्रेय जी आगे कल के कथा प्रसंग में वो बात कहेंगे। आज की कथा को अब यही विराम देते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण। सियावर रामचंद्र की मोर मुकुटवंशी वारेगी। श्री वेद व्यास जी महाराज की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। श्रीमद भागवत महापुराण की जय। श्री वरा भगवान की जय। श्री कपिल भगवान की जय। शंकर भगवान की जय। अनंत कोटि सर्व संत महात्माओं की जय। आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान खान की महापुराण भागवत निरमल सुख मुख विगलित निगम कल्प फल परमानंद सुधा रसमय कल लीला रति रस रस निधान की आरती अति पावन पुराण की कली मल मथनी त्रिताप निवारिणी जन्म मृत्यु मय भव भय हारिणी सेवत सतत सकल सुख कारिणी शुभ औषधि हरि चरित गान की आरती अति पावन पुराण की विषय विलास विमोह विनाशिनी विमल विराग विवेक विकासिनी भगवत स्वरहस्य प्रकाशिनी परम ज्योति परमात्म ज्ञान की आरती अति पावन पुराण की परमहंस मुनि मनोल्लासिनी रसिक हृदय रस रास विलासिनी भोक्ति मुक्ति रति प्रेम सुदासिनी कथा कीर्तन प्रिय सुजान की आरती अति पावन
चंद्र यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः सदा सेव्या श्रीमद्भागवती कदा यस्या श्रुणमात्रेण हर्षित्तं समाश्रित ओम शांगाय स परिवाराय सायुधाय सहवानाय श्रीकृष्णाय नमः। यथा लब्धोपचार मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। बोल सियावर रामचंद्र की जय। मोर मुकुट वंशी वाले की जय। बोले श्रीमद भागवत महापुराण की जय। बोले श्री वेद व्यास जी महाराज की जय। बोले श्री सुखदेव जी महाराज की जय। बोले श्री परीक्षित जी महाराज की जय।